ओम शांति।
हम सबके बीच एक ऐसी विशेष विभूति, विशेष आत्मा जिसको ये कह सके, दिलाराम बाबा ने एक बहुत विशेष कार्य करने के लिए निमित्त बनाया है। जब अनेक आत्माओं के दिल में कुछ समस्या आती है, हार्ट की प्रॉब्लम आती है, तो आपके पास आते हैं और आप उसके दिल में दिलरुबा दिलाराम बाबा को बिठा देते हैं और वो ठीक होकर के बाबा बाबा करते आपके पास से जाते हैं। आप ऐसी विशेष हस्ती डॉक्टर सतीश भाई जी आज हम सबको लाभान्वित करने के लिए पधारे हैं। आप पिछले 20 वर्षों से बाबा को पहचाना, आप वर्तमान समय शांतिवन आबू रोड में ट्रॉमा सेंटर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। हजारों हार्ट पेशेंट को अपने राज्यों के अभ्यास से बिना हार्ट की सर्जरी के ठीक किया हुआ है। आपको अपनी इस सेवा के फल स्वरूप कई संस्थाओं ने, गवर्नमेंट ने सम्मानित भी किया है। आपका सदा प्रसन्न चेहरा आपकी बहुत बड़ी पहचान है। हम सभी सुनेंगे आज का विषय, ज्ञान योग की गहराई, आदरणीय भ्राता डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। हम सभी एक हाथ की ताली से स्वागत भी करेंगे, अभिवादन भी करेंगे और सुनेंगे डॉक्टर सतीश गुप्ता जी से।
ओम शांति। सभी को मधुबन में आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सभी को? आज सुबह की मुरली सुनी सभी ने? सुनी? देखो, बाबा ने आज हमको सुबह की मुरली अगर देखें तो मुरली क्या थी, खजाना था ना बिल्कुल। तो ऐसी मुरली हमने सुनी है। और एक बात जो हमें, जो लास्ट की लाइनों में थी ना, मधुबन निवास से जो बाबा मिल रहे थे कि ज्ञानी और योगी हेतु आत्माओं को कभी क्या नहीं हो सकता है, पुराना स्वप्न भी नहीं आना चाहिए ना, पुराने जीवन का स्वप्न भी नहीं आना चाहिए। संकल्प दूर की बात है ना, पुराने दुनिया का संकल्प, पुराने विचार, पुरानी भावनाएं, पुराने संस्कार स्वभाव जो हमें दुख देते हैं नहीं? तो अगर वो नहीं आए, अगर पुराना याद नहीं होगा तो क्या याद होगा? नया याद, नया क्या है? सत्युग याद होगा ना, सत्युग के संकल्प होंगे, वर्तमान और नया भविष्य में आने वाला है। तो आज हम इसी बात पर, ज्ञान और योग की गहराई, क्योंकि देखो जब हम ऊपर ऊपर से, तो हम घर में सब काम करते हैं ना, दुनिया में हम सब अपना अपना काम करते हैं और पांचों तत्व को हम यूज करते हैं ना, भूमि को भी यूज करते हैं, वायु को भी यूज करते हैं, जल को भी यूज करते हैं, गर्मी को भी यूज करते हैं, आग को भी यूज करते हैं और आकाश को भी यूज करते हैं, और हम सब यूज करते हैं। किंतु वही काम जब साइंटिस्ट समझता है, वैज्ञानिक समझता है, तो उसकी गहराई में जाता है, वो हवा की गहराई में जाता है। हवा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बनी है, वो मॉलिक्यूल का आपस में क्या रेशियो है, कैसे वो मॉलिक्यूल काम करते हैं ना, कैसे वो हवा बनती है ना, ऑक्सीजन का क्या काम है, कैसे वो, इसी गहराई में जाता है। एक आदमी, आम आदमी भी देखता है, रोज आप खाना बनाते हैं ना, बर्तन भगोने में पानी उबालते हैं, तो पानी उबलता है तो क्या होता है, भाप बनती है, भाप बनती है तो उसका जो ढक्कन होता है, वो ढक्कन क्या करता है, ऊपर उठने लगता है ना, है ना। तो आप रोज देखते हैं, आपके मन में ख्याल नहीं आता, किंतु एक साइंटिस्ट ने ऐसे ही देखा कि भाप से ढक्कन ऊपर उठ रहा है, तो उसने क्या बना दिया, स्टीम का इंजन बना दिया ना। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, महीनता में जाते हैं, गहराई, छोटी छोटी बातों गहराई में जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं, महान बन जाते हैं ना। आज सब उनको याद करते हैं, नहीं ऐसा याद करते हैं ना, किसी ने एरोप्लेन बनाया 1903 में, राइट बंधुओं ने एरोप्लेन में, कैसे एरोप्लेन कैसे बनाया, सिंपल सी बात। हम भी रोज चिड़िया को देखते हैं उड़ते, नहीं देखते, उसने भी चिड़िया को देखा उड़ते हुए है ना, तो उसने कहा मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं बना दूं कि जो, और आज हम भी चिड़िया की तरह उड़ते हैं नहीं उड़ते? चिड़िया तो खाली बिना सामान के उड़ती है, हम क्या कैसे उड़ते हैं? हम 20 किलो का बैग भी साथ में लेके उड़ते हैं नहीं उड़ते? 20 किलो का बैग लेके नहीं उड़ते हम लोग? कैसे बना वो प्लेन, कैसे बना? इंसान ने गहराई में गया ना। जो चीज हम रूटीन की बात समझते हैं कि पानी तो उबलता ही है, ढक्कन तो ऊपर नीचे, इसमें क्या बड़ी बात है, चिड़िया तो रोज उड़ती है, पर उसी बात को गहराई समझा, वही डिजाइन बनाया, उसी तरह के पंख बनाए, उसी तरह की चीज बनाई, तो क्या हो गया, एरोप्लेन बना दिया है। तो ऐसे ही जब हम सभी ज्ञानी हैं, सभी रोज मुरली सुनते हैं, रोज अमृत वेला करते हैं, योग लगाते हैं, है ना, धारणाएं भी मोटी मोटी हम निभाते हैं, किंतु 108 रत्न कितने बनते हैं, एक मतलब जो विजय रत्न कितने बनते हैं, 108 ही बनते हैं ना, 108 की माला गाई जाती है ना। राजा रानी कितने बनते हैं? अच्छा, आप में से जो प्रजा में आना चाहते हैं हाथ उठाओ, एक दो तो आ जाना ना, प्रजा तो चाहिए, नहीं चाहिए, एक दो, एक में तो एक दो भी नहीं आना चाहते, नहीं सारे राजा बनेंगे, क्या बात है। इनकी टीचर कौन सी, हिसार की टीचर कौन सी आई है? आप हैं, अच्छा, आपके सारे राजा बनने वाले हैं एकदम, है ना, बैठिए बैठिए। तो अच्छी बात है, बधाई हो, इन एडवांस आपको बधाई हो, नहीं? तो किंतु महान बनने के लिए, राजा बनने के लिए हमें क्या करना पड़े, राजा बनने के लिए प्रजा बनानी पड़े, और महान बनने के लिए महीनता में जाना पड़े ना, महीनता मतलब ज्ञान की गहराई में जाना पड़े। ज्ञान माना समझ, ज्ञान माना ये नहीं कि मैं मुरली सुन ली बस हो गया पूरा, ज्ञान माना ये नहीं कि बोला मैं आत्मा हूं तो पूरा हो गया क्या, नहीं, ये समझ के मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, है ना, अति सूक्ष्मता में जाना। ज्ञान का एक एक बिंदु जो है, आज जैसे हमने मुरली सुनी, धर्म माना धारणा, वो मतलब उसकी गहराई में जाओ ना उसकी। आज मैं आपसे इसी बात पे चिंतन करूंगा, ज्ञान की गहराई क्या है। अगर हम ज्ञान की गहराई में चले गए तो लाइट हाउस बन जाएंगे, ज्ञान की गहराई में चले गए तो क्या बन जाते हैं, लाइट हाउस। लाइट हाउस क्या करता है, खुद तो लाइट से भरा होता है कि दूसरों को भी लाइट रास्ता दिखाता है, उसके मस्तक को देख के, उसके चेहरे और चलन को देख, चलन माना कर्म, चेहरा माना ये, तो चेहरा ये हो गया ना, पर चेहरा किसका दर्पण है, मन का दर्पण है, जो मन में होता है ना हमारे, वो चेहरे पे दिखाई देता है। तो जैसा मन मेरा होगा वैसा मेरा चेहरा होगा, और चलन माना कर्म, तो चेहरा और चलन, चेहरा ये नहीं कि गोरा काला चेहरा, नहीं, नैन नक्श वाली बात नहीं, मेरा मन कैसा है तो उसके अनुसार मेरा चेहरा होगा, और चलन, चलन कैसे होगी, कैसे होगी, वो भी जैसा मेरा मन होगा, ठीक है ना। तो मेन जो बिंदु है वो मन है, तो मन का परिवर्तन, अपने मन को परिवर्तन कर दें। अब हम इसकी गहराई में धीरे धीरे जाएंगे, सभी एकाग्र होके समझेंगे ना, समझना ना, ज्ञान माना समझ ही है ना, फिर समझ माना समझ के फिर उसे से चलना, वैसा बनना, है ना। ये नहीं कि समझ वाला धोखा नहीं खाता है, ठीक है, अगर हम गुस्सा कर रहे हैं तो इसका मतलब हम समझ नहीं है, ज्ञान मुरली सुनने के बाद गुस्सा कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें समझ है क्या, मैं समझ नहीं आया कि गुस्सा क्या चीज होती है और ज्ञान क्या चीज है ना। जल्दीबाजी कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, तो समझ है नहीं, क्योंकि इसको समझ आ गया तो बेफिक्र बन गया ना, बाबा का बच्चा माना बेफिक्र। तो ज्ञान की गहराई क्या है, आज हम इस बात पे चलते हैं, और फिर योग की गहराई। तो ज्ञान की जिसके अंदर गहराई आ गई वो लाइट हाउस बन जाता, और जिसके अंदर योग की गहराई आ गई वो क्या बन जाता, माइट हाउस। माइट हाउस माना जहां, जैसे पावर हाउस होता है ना, सारे शहर में एक पावर हाउस होता है, तो एक पावर हाउस से क्या होता है, पूरे शहर में क्या चलती है? पूरे शहर में लाइट तो जलती है, किंतु और क्या होता है? पंखे भी चलते हैं, हीटर भी चलते हैं, एसी भी चलते हैं, फ्रिज भी चलते हैं, फैक्ट्री भी चलते हैं, नहीं होते? पानी भी नीचे से ऊपर निकालते हैं, है ना? नीचे नहीं, कुएं होते, कुएं में से पानी कैसे निकालते हैं? किससे निकालते हैं? बिजली से निकलेगा ना? नहीं, मोटर से, मोटर खींचेगी ना? तो माइट हाउस कितने काम करता है? तो योग की शक्ति आ जाए तो फिर योग की गहराई में जाने से फिर योग की शक्ति आएगी। तो जितना हम गहराई में जाएंगे उतना हम माइट हाउस बनते जाएंगे, ठीक है ना? तो आज चलो इसी बात पे चले, समझना। चलिए, सबसे पहली बात तो हमें क्या करना पड़े कि जो ये समझ पहले हमने समझ हम पहले भी हमें समझ मिली है। कैसे समझ मिली? ज्ञान में आने से पहले कैसे समझ हमको मिली? हमें समझ आत्माओं ने हमें समझ दी। आत्माओं ने, आत्मा में कौन कौन आत्माएं थी? सबसे पहले आत्माएं कौन सी थी जिन्होंने हमें समझ दी? हमारे माता पिता ने दी, ठीक है। फिर किसने दी? स्कूल में गए, स्कूल में टीचर ने समझ दी, है ना? ज्ञान दिया, सो कॉल्ड ज्ञान दिया, है ना? पर वो जितना भी ज्ञान दिया वो पांचों तत्वों का दिया। माँ बाप ने क्या ज्ञान दिया? तत्वों का ज्ञान दिया, पांच तत्वों का, ना? कैसे शरीर को कैसे मेंटेन करना है, कैसे साफ रखना है, आंखों की संभाल कैसे करनी है, हमारा आपस में व्यवहार कैसा होना चाहिए, है ना? समाज में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, मतलब वो उन्होंने अपने हिसाब से जो सीखा था, अपने माँ बाप से सीखा था, वातावरण सीखा। फिर हमारे गुरुओं ने हमें, टीचर ने हमें पढ़ाया, वो किताबी ज्ञान क्या था? किताबी ज्ञान भी पांच तत्वों का ज्ञान था। फिर हमारे गुरुओं ने पढ़ाया, गुरु भी हमने किया, अलग गुरु किया, किसी राधा स्वामी का किसने किया होगा, किसने कोई और गुरु बनाया होगा, है ना? बनाया था ना गुरु, नहीं? किसने हनुमान जी की पूजा, फिर पूजा भी की हमने ना, हनुमान की किसी किसी की पूजा की, है ना? तो फिर वो सब करने के बाद हमने उनकी भी कहानियां भी पढ़ी, है ना? तो वो समझ हमें मतलब वो ज्ञान की समझ, सो कॉल्ड ज्ञान, भक्ति का ज्ञान हमें मिला, भक्ति के बारे में समझ मिली, है ना? किंतु ये समझ वो सत्य नहीं थी। वो समझ कैसी थी? सत्य नहीं थी उनकी, वो भी उनकी अपनी समझ नहीं थी, वो भी उन्होंने किसी और से ली हुई थी, ठीक है? तो वो भी अंधविश्वास पे आधारित थी, अंधविश्वास पे और इस पांच तत्वों के ज्ञान पे आधारित थी। कि तो ये समझ जो है, ये समझ स्वयं परमात्मा ने दी है। ये ज्ञान किसने दिया? स्वयं परमात्मा ने। परमात्मा इस संसार का क्रिएटर है ना, इसने संसार को रचा है और डायरेक्टर भी है, और साथ साथ क्या है? प्रिंसिपल एक्टर भी है ना? तो भगवान ने खुद पूरे, जैसे आपको, जैसे छोटा बच्चा है आपका, अभी दो एक साल का हुआ, छह महीने का हुआ, अभी बड़ा हो गया, 20 साल का हो गया, तो 20 साल का हो गया, उसको पता तो है, 4 साल तक तो बातें सब पता है कि तू 4 साल से पहले कैसा, 3 साल कैसा था, 2 साल कैसा था, 6 महीने का कैसा था, 2 महीने कैसा था, पता है क्या उसको? कि तो उसकी माँ को एक एक बात का पता है, पैदा हुआ तो कैसा था, है ना? दूसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ, चौथे दिन क्या हुआ, तो माँ को हर बात का पता है। तो और भी कोई उसको बताए तो उसको एक्यूरेट बात नहीं बता सकता, किंतु माँ उसको एक्यूरेट बताएगी। ऐसे जो बाप है हमारा शिव बाबा, उसको इस सृष्टि चक्र का पूरा पता है, सतयुग में हम कैसे थे, कैसी हमारी शक्ल थी, कैसी हमारी अकल थी, क्या गुण थे हमारे अंदर, है ना? तो माँ भी कहती है तू पहले कितना अच्छा था, बच्चों को नहीं बोलती, तू पहले छोटा था कितना अच्छा था, कितना प्यारा था, अभी तो क्या एकदम सारा दिन गुस्सा करता है ना, राक्षस जैसा लगने लगा अभी तो, है ना, शैतान हो गया है ना, नहीं बोलती माँ। तो अभी बाप भी क्या करता है, बच्चे तुम तो इतने अच्छे थे पहले, सत्युग में इतने सुंदर थे, इतने अच्छे थे, इतने प्यारे थे, और अभी तुम क्या हो गए हो? नहीं, उसको एक एक बात का पता है ना, तो उसने आके ज्ञान दिया है, उसने आके हम समझ दिए, क्योंकि जो दुनिया भर ने समझ दी उससे हम भटक गए थे, एक्यूरेट नहीं थी। किसी की मां मर जाए तो क्या होता है, उसकी बहुत सारी मां बन जाती है ना, नहीं होता? तो ऐसे ही हमारी मां नहीं थी, हमें पता ही नहीं था हमारी मां बाप कौन है, तो कोई हमारा बाप मां बाप बन गया, है ना? उसने जो जो पढ़ाया हमने वही पढ़ लिया, किंतु अब असली माँ बाप आए तो उन्होंने हमें पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, तो अभी सबसे पहली बात है कि हमें ये ज्ञान समझने से पहले पहला जो कुछ पढ़ा हुआ है, किताबों में पढ़ा हुआ है, गुरुओं से सुना हुआ है, वो सब भूल जाना है। स्लेट पर नया कुछ लिखने से पहले क्या करना पड़ता है? लिखा पहले वो लिखो, आप ऊपर से लिख दो, फिर क्या होगा? समझ में आएगा? आएगा समझ में? समझ में ही नहीं आएगा, नहीं? अच्छा आप पढ़ लोगे, शायद आपकी हैंडराइटिंग है, दूसरे समझ सकेंगे? नहीं समझ सकेंगे। तो आपको, हमें सबसे पहली बात है कि अपने जीवन में जो कुछ पढ़ा हुआ है, गुरुओं सुना हुआ है, माँ बाप से सुना हुआ है, भगवान के बारे में किताबों में शास्त्रों में पढ़ा हुआ है, रामायण में पढ़ा हुआ है, महाभारत में पढ़ा हुआ है, गीता और दूसरी सो कॉल्ड गीता में पढ़ा हुआ है, वो सब भूल जाना। अगर वो रखेंगे तो फिर कंफ्यूजन होता रहेगा, फिर ये ज्ञान कभी क्लियर बुद्धि में नहीं बैठेगा। ठीक है, तो पहले मिटा दो, स्लेट को मिटा दो, मिटाओ अपने अपने स्लेट मिटाओ। मिटा दी? पक्का? अभी तक नहीं मिटाई हो तो मिटा दो, ऐसे कर दो है ना, ऐसे पोछा मार दो एक, है ना? ठीक है, मिट गया? ठीक है, वेरी गुड। तो फिर बाबा ने हमें ज्ञान दिया। सबसे पहले आकर के बाबा ने बताया, बेटा तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा। देखो हॉस्पिटल में हमारे पास तो रोज होता है ना, रोज माना डॉक्टर्स के पास, हमने 33 साल हो गए मुझे डॉक्टरी करते हुए ना, मेडिकल प्रोफेशन में, दिल्ली से MBBS किया, दिल्ली से MD किया, दिल्ली से हार्ट में स्पेशलाइजेशन किया है ना, तो पेशेंट ही पेशेंट ना, 33 साल से पेशेंट ही देख रहे हैं ना। तो क्या होता है, सब लोग तो, काफी लोग तो हमारे पास इस स्टेज में आते हैं जो इसको बचा भी नहीं सकते। हॉस्पिटल में कब भागते हैं लोग? जब मरने पे आते हैं, तब तक तो अपनी दवाई करते रहते हैं, किसी और डॉक्टर की दवाई करते रहते हैं, जब मरने पे आते हैं तो हॉस्पिटल में भागते हैं। तो कई बार हमारे पास इतनी लास्ट स्टेज में आते हैं कि बस पेशेंट मरने वाला ही होता है, तो हम बचाने की पूरी कोशिश करते हैं पेशेंट को, है ना, आखिरी समय में भी, किंतु कई बार बचा लेते तो ठीक है, कई बार नहीं बचा पाते है ना, आधी रात पेशेंट आते हैं कई बार। सब डॉक्टर्स तो हमेशा हमारे हॉस्पिटल में मौजूद रहते ही हैं, तो डॉक्टर्स बचाने की कोशिश करते हैं, खूब बचाने की कोशिश करते हैं, सब दवाइयां देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, शॉक्स लगाते हैं, कि तो नहीं बचा पाते। तो क्या कहते हैं डॉक्टर पेशेंट के रिलेटिव को, रिश्तेदार को क्या कहते हैं? नहीं, आई एम सॉरी, हमने कोशिश की बहुत, जो आपका था वो चला गया, जो आपका था वो चला गया, बॉडी ले जाओ। क्या ले जाओ? बॉडी। कहते अपना पेशेंट वापस ले जाओ, अमेरिका में शायद ऐसा बोलते होंगे नहीं, ऐसे क्या, अपना पेशेंट वापस ले जाओ। आया था पेशेंट, अभी क्या जा रहा है, वजन उसका पहले 68 किलो था, अभी अभी कितना वजन है, अभी कितना हो गया, 67 हो गया क्या, अभी भी 68 है, तो क्या निकल गया उसके अंदर से? ये कहा जो तुम्हारा था वो चला गया, मिट्टी ले जाओ, नहीं बॉडी ले जाओ ना, तो क्या था, क्या निकल गया? अब ये अपने आप से बात करो, मैं बात करने का तरीका बता रहा हूं, कैसे बात करो। ठीक है, अब मान लो मैं अभी चला जाऊं शरीर छोड़ के, तो क्या होगा, क्या रह जाएगा, बॉडी यहां रह जाएगी और मैं आत्मा निकल जाऊंगी, है ना, तो मैं कौन हुआ, आत्मा बना। तो ऐसे अपने आप से बार बार ये समझ पाओ, भगवान ने भी, बच्चे तुम देह नहीं हो, तुम अपने को देह समझते आए हो, किंतु अब अपने को देह नहीं समझो, अपने को क्या समझो, आत्मा समझो। जो मरने वाले दिन समझते हो वो अभी समझो, मरने वाले दिन समझते हैं ना, नहीं समझते है? क्या मरने वाले दिन समझना है, मरने वाले दिन, इसको इसको बार बार रियलाइज करो, जैसे बाबा ने कहा आज की उम्र अंतिम आहुति, ये जो मैंपन है, मैं ये शरीर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं पिता हूं, मैं पति हूं, है ना, मैं बहुत समझदार हूं, मैं मां हूं, मैं पत्नी हूं, है ना, मैं बहुत समझदार हूं, बहुत अनुभव है मुझे, ये जो मैंपन है ना, ये त्याग करो, समझ रहे हैं? इसको अंदर से निकालो। ये बाबा ने कहा ये मैपन गलत है, ये तुम्हारे साथ नहीं जाता है। अब मैं आत्मा निकल जाऊं तो क्या होगा? शरीर यही रह गया, जिसको सारी उम्र कहां गई मेरी, 55 साल उम्र कहां गई दे के संभाल करते करते, है ना? 95% समय कहां जाता है हमारा, ये दे के संभाल करते करते, सो खिलाते पिलाते नहलाते, है ना, खाना उसकी ध्यान रखते हुए, क्रीम लगाते, है ना, नहीं बाल सीधे करते हुए, है ना, सिर में तेल लगाते, है ना, इसको आराम दिलाते, इसको सैर कराते, है ना, ताकि चलते रहे, है ना, 95% समय इसमें जाता और मरने के समय ये क्या कहता, जाओ जाओ मैं तुम्हारे साथ नहीं आता, नहीं। अच्छा, अब 33 साल से डॉक्टर का काम करें तो डॉक्टरी के डॉक्टर साथ जाते ही क्या, जाते क्या, बच्चे साथ जाते क्या, युगल साथ जाएगी, जितना पैसा कमाया वो साथ जाएगा क्या, थोड़ा तो जाएगा, नहीं थोड़ा तो, 100 रुपए तो रास्ते में चाय पानी पीना पड़े तो, नहीं चलो पांच, एक चाय तो रास्ते में पीनी पड़े ना, तो रास्ते में 5 रुपए तो जा सकते, नहीं जा सकते 5 रुपए तो, है? तो फिर ये अपने एक्चुअली इस, ये बातें बड़ी सिंपल सिंपल सी हैं कि तो हम करते नहीं है, है ना, ये ज्ञान की गहराई अंदर समझ ये आनी चाहिए कि मैं ये हूं सिर्फ, ये मैं नहीं हूं, ना मैं डॉक्टर हूं, ना मैं मां हूं, ना मैं बाप हूं, ना मैं पिता हूं, ना पत्नी हूं, मैं ये चमकता हुआ सितारा हूं। बचपन में कविता सुनी ना आपने, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये कविता 1806 में दो सिस्टर्स थी लंदन में, इनका नाम था किम टेलर और जेन टेलर, ये चार लाइनें थी, पहले चार लाइनें इन्होंने, इनको नर्सरी राइम बनाया था 1806 में, उसके पहले कविता लिखी गई थी आज से 460 साल पहले किसी फ्रांस के कवि ने लिखी थी, और उसने कैसे लिखी थी पता है, कविता कैसे लिखी थी, उसमें ज्ञान तो था नहीं, बाबा तो नहीं आया तब तक था, तो उसको इसका दोस्त था उसका, एक ये जो कवि था ना उसका दोस्त था, बचपन से उसके साथ साथ वाले घर में रहता था, छोटे से छोटे मतलब पुराने घर थे, तो पुराने समय से, अब 70-80 साल का हो गया होगा, तो उसका दोस्त था, तो उसके साथ साथ ही बैठते थे, साथ साथ बचपन से खेल कूद के बड़े हुए, शादी हो गई, घर आसपास में घर था तो वहीं पे सारे बड़े हो गए, तो वो जो है उसके साथ सारा दिन उठना बैठना, तब काम तो कोई नौकरी तो होती नहीं थी उस समय 460 साल पहले, है ना, लोग अपने खेत वेत जो भी करते होंगे वो करते थे और आराम से रहते थे, तो सारा दिन बूढ़ा हो गया था, तो साथ में उसका दोस्त बैठा रहता था, आपस में बातचीत करते थे, तो दिन में बैठे बैठे दोस्त को क्या हुआ, अचानक उसका शायद हार्ट रुक गया, हार्ट अटैक आया होगा शायद, तो वो हार्ट रुका, सांस रुक गई, तो मर गया, तो मर गया, तो उसके उसने घर वालों को बुलाया, उसके घर वालों को उठाया, कफन बॉक्स होता है ना लकड़ी का, उसमें उसकी बॉडी को रखा, शाम को सिमेट्री होती ना जहां, क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं उसको, वो दफना देते हैं ना बॉडी को, दबा देते हैं उसको, हम सिमेट्री कहते हैं इंग्लिश में, सिमेट्री कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं ना, तो उसको रात को शाम को दबा दिया, 5-6 बजे बॉडी को दबा दिया, अब शाम हो गई, कभी को कभी सोच शाम को आज बहुत उदास है, यूजली उसका दोस्त शाम तक घर ही साथ में रहते थे दोनों लोग, बस सुबह से खाना खाया, खाना खाने के टाइम घर पे आए, बाकी टाइम साथ ही रहते थे ना, घर वाले तो बूढ़ा आदमी को कौन पूछता है, तो उसको अपने आराम से बैठे रहते थे, वो अपना आपसे बातचीत करते थे घर की, तो उन्होंने जो है उसको, आज वो अकेला था, वो सोच रहा है कि मेरा दोस्त कैसे मर गया, मैं कैसे जिंदा हूं, जब वो मरा तो भी देखने में तो वैसा ही था, शक्ल बिल्कुल वैसी थी, सब कुछ मैं भी जैसे ठीक ठाक हूं, वो जिंदा, वो कहा मर गया मैं जिंदा, ये फर्क क्या, दोनों में क्या फर्क था, ऐसा क्या था उसको जिंदा रखे हुआ था, मैं जिंदा हूं अभी, वो मर गया, दबा भी दिया, घर वालों को दया भी नहीं आई, अब मेरे को जिंदा दबाए तो मैं तो 2 मिनट भी कमरे में घुट नहीं सकता है, कोई डब्बे में डाल दे मेरे को, सो यही बातें सोच रहा था, सोचते सोचते उसका ध्यान आसमान में तारों पर जाता है, तारे चमक रहे थे आसमान में, तो फिर सोचता है कुछ उसके मन में ख्याल नहीं आता है, तो फिर उसको याद आती है उसकी बात, क्रिसमस था ना, ईसा मसीह था ना, तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो आपको याद होगा, कभी तब पढ़ी होगी आपने कहानी ईसा मसीह की जन्म की, जब ईसा मसीह का जन्म होता है तो एक आसमान में गडरिये जो थे ना, गडरिये शेफर्ड्स, उन्होंने आसमान में एक तारा देखा चमकता हुआ, उन्होंने कहा इस तारे ने ईसा मसीह के रूप में जन्म दिया, यीशु के रूप में जन्म दिया। तो तब उसको अंदर से ऐसी टचिंग आती है कि यहां पर एक सितारा है, यहां पर एक सितारा चमक रहा है, और जब तक वो सितारा चमकता रहता है सब कुछ चलता रहता है, हार्ट भी चलता रहता है, सांस भी आता रहता है, पेट में खाना भी बचता रहता है, हम हाथ पैर चला भी सकते हैं, सारे काम आंखें देखती रहती हैं, कान सुनते रहते हैं, मुंह से हम बोल सकते हैं, वो ये तारा सब कुछ चला रहा है, और जब वो तारा निकल जाता है कुछ भी चलता नहीं। पर वो देखते, उसने कहा जब वो तारा था उस मेरे दोस्त के अंदर, मेरे अंदर भी है, किंतु वो तारा नजर तो नहीं आया, जब मरा तो दिखना चाहिए था ना, दिखाई भी नहीं दिया। अब यहां किसी ने आज तक कहा भी नहीं कि यहां पे तारा होता है, यहां पर निशान तो वो भी लगाते हैं, अपने पादरी जो होते हैं ना, वो भी क्रिश्चियन में वो भी कुछ ना कुछ निशान तो लगाते हैं, तो यहां पर ही लगाते हैं। तो उसने कहा ये कैसे, तब उसके अंदर से कविता निकलती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। एक सितारा यहां चमक रहा है, जब तक इस सितारा चमकता सब कुछ चलता रहता है, किंतु जैसे ही सितारा निकल जाता है कुछ भी काम नहीं करता है, हम आदमी कहते मर गया, किंतु नजर तो नहीं आता है। तो इसने कहा हाउ आई वंडर व्हाट, तुम कौन हो मुझे आश्चर्य है। तो ये कविता किस लिए गाई थी पहले पहले, आत्मा के लिए, ठीक है। अभी तो बच्चे स्कूल में ऐसे ही गा देते हैं ना, पता थोड़ी ना मतलब पता होता है क्या, मतलब पता नहीं, हमने भी गाई थी बचपन, पता मतलब नहीं पता था ना, तो इसका मतलब ये है कि अभी हम इसको ऐसे गा सकते हैं, ट्विंकल ट्विंकल ज्ञान मिलने के बाद, लिटिल स्टार नाउ आई नो हु आई एम, आप समझ में आ गया ना मैं आत्मा हूं, है ना। तो ये उसको पता नहीं था, फिर उसने क्या लिखा, अब उसके बारे में, उसके बाद परमात्मा की तरफ ध्यान गया उसका, फिर उसने क्या लिखा, अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई, मतलब अबाउ द वर्ल्ड माना वर्ल्ड कहां तक है, जहां तक सूर्य चांद तारे हैं, आसमान जहां तक है वहां तक संसार है ना, तो मतलब इस सूर्य चांद तारों के भी पार, लाइक ए डायमंड नॉट ए डायमंड, एक 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 और सितारा है जो हीरे जैसा है, हीरा नहीं है, क्या है, हीरे जैसा है, हीरा नहीं है। फिर उसने गलती कर दी, क्या गलती की, लिख दिया, पहले लिख रहा अबाउ द स्काई, लिखा अबाउ द वर्ल्ड, फिर क्या लिख दिया, इन द स्काई, अपोजिट हो गया ना, स्काई तो इस दुनिया में ही है ना, इस आसमान के भी ऊपर एक और तारा है जो हीरे जैसा है, वो कौन है, परमात्मा है। डायमंड माना हीरा, क्यों, हीरा सदा चमकता रहता है इसलिए। तो पहली दो लाइन इसने आत्मा के लिए कही, दूसरी दो लाइन किसके लिए कही, परमात्मा के लिए कही, ठीक है। तो अभी जो है ये सितारा यहां पर लगभग 2.5 इंच यहां से अंदर, कितना, यहां पर नहीं कि खाल निकाल के देखो, यहां से थोड़ी खाल काट के देखो तो सितारा नहीं है ना, कितने दूर है यहां से, 2.5 इंच अंदर, और यहां से 3 इंच नीचे, ठीक है, बीच में जहां ये दो लाइन मिलती है ना, वहां पर आत्मा की सीट है। ड्राइवर कहां बैठता है, ये कार है ना, ड्राइवर कहां बैठता है, कहां बैठता है, जहां पर सारा कंट्रोल होता है वहीं बैठेगा ना, नहीं के पीछे वाली सीट पे बैठ के चलाएगा, ये लेफ्ट साइड में बैठ के चलाएगा, जहां स्टेयरिंग भी है, ब्रेक भी है, क्लच भी है, लाइट भी है, पानी भी है, हॉर्न भी है, सारी चीजें ना, जहां वहां वहां बैठेगा। तो आत्मा इस शरीर का कंट्रोलर है ना, ड्राइवर है ना, तो आत्मा यहां बैठती है, यहां से दाएं अंदर, दोनों ब्रेन है ना, राइट और लेफ्ट ब्रेन है, राइट और लेफ्ट ब्रेन के बीच में एक और ब्रेन है, उसको कहते हैं ब्रेन ऑफ द ब्रेन्स। दोनों ब्रेन्स का कंट्रोल रूम है, राइट और लेफ्ट ब्रेन का कंट्रोल रूम है बीच में, उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। भले याद नहीं करो, हाइपोथैलेमस कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, हिंदी में शब्द नहीं है उसके लिए, है ना। तो हाइपोथैलेमस है ना, तो वो जो है जो ब्रेन है नीचे वाला जो ब्रेन है, उस ब्रेन में इन दोनों का कंट्रोल है। और उस हाइपोथैलेमस के नीचे एक ग्लैंड और है, उसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, वो मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड में ना पूरे शरीर की एक एक कोशिका, हमारी बॉडी में 80,000 बिलियन कोशिकाएं हैं। जैसे एक मकान ईंटों से बना होता है ना, कोई मकान में 50,000 ईंटें होती हैं, कोई मकान में बड़ा मकान हो तो 1,00,000 ईंटों से बना हो, है ना। किंतु हमारा जो शरीर बना है वो कितनी ईंटों से बना है, 80,000 बिलियन। 80,000 को 100 से गुना करो, इतने करोड़, नहीं नहीं बिलियन, हाँ 80,000, ठीक है 80,000 को 100 से गुना करो, इतने करोड़, ठीक है, वो अरब ठीक कह रहे हैं, इतना मतलब इतने 80,000 अरब कोशिकाओं से मिलकर बनी, 80,00,000 करोड़ कह लो, चलो है ना। इतनी ईंटों से हमारा मकान बना है, और सर सारी सारी कोशिकाएं जिंदा हैं इसके कारण से। जब वो आत्मा निकल गई तो सब मर गई। सेल्स सेल्स कोशिकाएं, जैसे मकान ईंटे बनाते ना, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप समझ सको ये बात कि क्या वंडरफुल हमें सिस्टम है हमारा, है ना। तो आत्मा यहां बैठी है दोनों ब्रेन्स को कंट्रोल करने के सेंटर पे बीच में, और नीचे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड जहां से हार्मोन निकलते हैं, 18 हार्मोन निकलते हैं, पूरे शरीर के एक कोशिका का आपस में मिलजुल के काम करे, है ना। नहीं तो कैसे काम चले। अब मैं बोल रहा हूं, देख भी रहा हूं, सोच भी रहा हूं, है ना, बोल भी रहा हूं, हाथों के एक्शन भी हो रहे हैं, सब कुछ एक्यूरेट हो रहा है ना, सुन भी रहा हूं कोई बात आप बोलते हैं तो, है ना। इतना सारा काम साथ साथ चल रहा है, नहीं चल रहा, साथ में हार्ट भी चल रहा है, ये थोड़ा ना हार्ट चलना बंद कर दिया, अभी सांस भी आ रहा है, पेट में खाना भी पच रहा है, साथ साथ ही सारा काम हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। तो ये सब कितना वंडरफुल काम चल रहा है। तो ये सब काम चल रहे हैं, ये सब चलाने वाले, इसकी सारा हार्मनी होती रहे आपस में, इसके लिए पिट्यूटरी ग्लैंड को इसलिए मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड में ना पूरी बॉडी की मास्टर जी है, है ना, ठीक है। उससे ऐसे केमिकल निकलते हैं, सारी बॉडी के अंदर हार्मनी रहती है, कंट्रोल रहता है, सामंजस्य रहता है। तो यहां आत्मा बैठी है, और आत्मा कैसे चलाती है शरीर को, फिर आत्मा से ही हाइपोथैलेमस से दो तार निकल रही हैं, एक गर्म तार एक ठंडी तार। गर्म तार बना इमरजेंसी की तार, जब खतरा है ना, जब आपको खतरा लगता है किसी बात का, तो आप हॉर्न होता है ना, हॉर्न गाड़ी में हॉर्न होता है, बजा देते हो, हॉर्न बजा देते हो, है ना, और जब ठीक है तो हॉर्न नहीं बजाते हो। ठंडी तार बना, सब बढ़िया है, ठीक है, और दोनों गर्म तार बॉडी के हर कोशिका में गई हुई है। नीचे सुई नीचे किडनी काट लिया तो क्या होगा, अभी मैं पैर बैठा नीचे रखा, मुझे देखता खाई तो नहीं दे रहा, मेरे पैर के नीचे कोई चीटी है, और काट ले तो क्या होगा, तुरंत सेंस होगा ना, और मैं पैर हटा लूंगा या ऐसे ऐसे करूंगा ना, नहीं तो अलार्म जाएगा ना सारा, किसने काट लिया, तो वो अलार्म एकदम तुरंत पता लगेगा, चेहरे पर उसका भाव भी आ जाएगा काटने का, नहीं तो वो कितना सुंदर सिस्टम बना हुआ। तो गर्म तार, तो पूरा कंट्रोल यहां पर है ना, कौन कंट्रोल करता है सब चाहते हैं, आत्मा। कैसे चला रही है आत्मा, आत्मा जो है उससे सात, जैसे इससे दो चीज निकल रही है इस बल्ब से, एक तो लाइट निकल रही है, दूसरी गर्मी भी निकल रही है। बहुत तेज होता पसीना नहीं लगता ना, देखो बहुत तेज लाइट में बैठो तो क्या होगा, पसीना। सूरज है ना, सूरज सामने, तो सूरज की भी, सूरज में भी क्या दो बातें हैं, एक तो लाइट है, दूसरी गर्मी है, है ना, नहीं। तो ऐसी आत्मा से सात लाइट निकल रही है, कितनी लाइट निकल रही है, सात लाइट निकल, सात तरह की ऊर्जा निकल रही है, सात तरह की करंट निकल रही है, सात तरह की एनर्जी निकल रही है, और वो पूरी शरीर में फैल रही है, ठीक है, जिससे शरीर चल रहा है। और जब आत्मा सातो लाइट में भरपूर है तब उसे कहते हैं सतो प्रधान। सतो प्रधान शब्द कहां से आया? सतो माना सात, प्रधान माना भरपूर। सतो प्रधान माना सातों से भरपूर, समझिए। और सतो प्रधान जब आत्मा सातों से भरपूर है तो उसको पावन कहते हैं। पावन किसे कहते हैं? पावन वो स्थिति है जिसमें आत्मा सातों गुणों में भरपूर है, ठीक है, मतलब 100% है एनर्जी उसमें, सातों गुण 100% है। और रजो मना श्याम, जब आत्मा में सातों गुण चलते चलते, आत्मा चलते चलते सातों गुण 50% से कम हो गए, कहते शाम को क्या होता है? रोशनी, अभी अभी रोशनी कितनी है और शाम कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी ना, मतलब शाम माना अंधेरा सा, आधा अंधेरा आधा रोशनी ना, है ना, धुंधला धुंधला हो जाएगा सब कुछ ना। तो जब आत्मा में भी सात गुण आधे से कम हो जाते हैं तो उसको कहते हैं रजो प्रधान। सत्युग त्रेता में आत्मा सत्युग में सतो प्रधान है, त्रेता में सतो है, 75% से कम हो गई। फिर द्वापर में क्या हुआ? द्वापर के शुरू में त्रेता पूरा होता ही 50 से नीचे हो गई, 49 हो गई तो क्या हो गया? अब एनर्जी कम हो गई ना, तो अभी रजो प्रधान कहलाई। अब ज्ञान कम हो गया, 50% से कम हो गया, सात गुण बताऊं कौन कौन से नॉलेज है, पर मैं पहले बात बता क्लियर कर दूं ताकि मैं समझ रहे ना क्या बात है। जैसे ही वो सात एनर्जी 50% से कम होती है तो क्या होता है? उससे पहले आत्मा राजा थी। देखो जब आपने देखा आजकल परफेक्ट कंपनीज होती है ना, इंडस्ट्रीज होती है ना, वहां पे कई सारे शेयर होते हैं, शेयर्स होते हैं ना लोगों के, कंपनी आजकल किसी एक आदमी की नहीं होती है, शेयर मार्केट में शेयर डाले जाते हैं। तो जिसके 51% शेयर होते हैं ना, 50% ज्यादा शेयर होते हैं, वो उस कंपनी का मालिक कहलाता है, वो वहां का प्रेसिडेंट बन जाता है उस कंपनी का, ठीक है। और जब वो उसके शेयर 50 से नीचे हो जाएंगे तो क्या होगा? उसके क्या करेंगे? उसको हटा देंगे, जिसके 50 से ऊपर हो जाएंगे उसको बना देंगे। तो सत्युग त्रेता तक तो क्या है, हमारी एनर्जी, आत्मा की एनर्जी कितनी है? 50% से ज्यादा है, 51%, मतलब 100% थी पहले, फिर 90 हुई, 85 हुई, 75 हुई, 75 तो त्रेता युग आ गया, है ना, सतो कहलाए, और फिर 70 हो गई, 60 हो गई, 51 हुई, तो ठीक था, 51 तक तो आत्मा राजा थी। स्व माने आत्मा, स्वराज्य, आत्मा का राज्य था, किस पर? मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों पर। आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार, तीनों इसके सिपाही हैं, तीनों मतलब मंत्री हैं, समझो बड़े मंत्री। सूक्ष्म शक्तियां दिखाई नहीं देते, जैसे आत्मा दिखाई नहीं देती, मन भी दिखाई देता नहीं, बुद्धि भी दिखाई देती नहीं, संस्कार भी दिखाई नहीं देते, तो तीनों पर इसका राज्य था। और मन के नीचे पांच और हैं, मन के नीचे पांच कर्मचारी हैं, कौन कौन से? आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा। ये त्वचा देख रहे हैं ऊपर, पूरी त्वचा, सारी बॉडी पर है त्वचा, वो सेंस करती है ना, ये भी जो छुएंगे, हाथ में भी त्वचा है, पैरों में भी त्वचा है, जो कुछ भी हम करते, छूते, कुछ भी फीलिंग करती है ना, त्वचा करती है ना, स्किन है ना। तो ये पांच कर्मेंद्रियां हैं, मन का कनेक्शन सीधा पांच से है, ठीक है। तो ये पांच मतलब, तो ये तीन जो है ऐसे सूक्ष्म कर्मेंद्रियां आत्मा के वश में थी। बुद्धि सही निर्णय देती थी, बुद्धि दिव्य थी उस समय, सत्युग त्रेता में बुद्धि दिव्य थी, दिव्य माने डिवाइन, दैवी गुणों पर आधारित थी, सत्यता पर, पवित्रता पर, निर्भयता पर, अंतर्मुखता पर, है ना, सहनशीलता पर, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, मधुरता। तो बुद्धि इस पे काम करती थी, दैवी गुणों पे, आज्ञाकारी, ईमानदार, फरमानबरदार, वफादार, है ना, ठीक है, संतुष्ट रहती थी, हर्षित, मुस्कुराती रहती थी, मुस्कुराती, मतलब इस पे आधार था जीवन का। फिर क्या हुआ? जब द्वापर युग शुरू हुआ तो आत्मा की एनर्जी कितनी रह गई? 50 से कम हो गई, 49 हो गई। अब नेक्स्ट कौन था, नेक्स्ट कौन था पावरफुल, नेक्स्ट कौन हो गया, मन था उसके बाद, आत्मा के बाद नेक्स्ट किसका नंबर था, मंत्री, सबसे बड़ा प्रधानमंत्री कौन था उसके बाद, तब तक तो प्रधानमंत्री सुनता था, राजा पावरफुल था, राजा के पास, अब राजा, अब मंत्री के पास ज्यादा पावर आ गई, आत्मा के पास कम हो गई, तो क्या बन गया, प्रधानमंत्री राजा बन गया, अभी मन राजा बन गया, ठीक है। तो द्वापर से कौन राजा बना, मन राजा बन गया। मन का कनेक्शन किससे था, आंखों से, नहीं, नाक से, मुख से, कानों से और त्वचा से था, नहीं। तो मन की, मन राजा बन गया, तो मन पे किसका प्रभाव पड़ा, इन पांचों का, है ना, आंखों से देखा, अरे बड़ा सुंदर है, बड़ी सुंदर है, बड़ा सुंदर है, नहीं, गई ना देह पे नजर, गई ना, कानों से, ये तो बहुत मीठा गाती है, ये तो बहुत मीठा बोलता है ना, है ना, जीभ पे, है ना, बहुत बढ़िया चीज बनाई, क्या बढ़िया चीज बनाई है ना, नहीं, स्किन पे गोरा काला, है ना, नैन नक्श, है ना। तो बुद्धि गई किस पर, मन गया उस पर, पहले इन पांच कर्मेंद्र से कनेक्शन था ना, अब मन गया उन पर। जब आत्मा का राज्य था तो मन जा नहीं सकता था, मन देह पे नहीं जाता था, आंखें वो कहती थी जो आत्मा देखती, आत्मा क्या कहती थी, आ सबको आत्मा देखो, सब आत्मा है, बिंदु बिंदु है, हम सब आपस में भाई भाई हैं। कभी भी आत्मा कभी भी किसको देह नहीं देखते थे, देह का भान ही नहीं था, गुणों में, गुणों को देखते थे, इसके अंदर कितना संतुष्ट है, देखो कितना मुस्कुरा रहा है, और आई हवामंडल बहुत बड़ा था, तो गुणों पे नजर रहती थी बस। अब गुणों पे नहीं, अब गुण तो थे ही नहीं, कि तो जैसे ही त्रेता युग शुरू, द्वापर युग शुरू हुआ, तो देह पे नजर जाने लगी, इससे फिर काम विकार आ गया। काम विकार आया तो फिर क्या हुआ, लगाव हो गया उससे, जिसके प्रति काम विकार आया, लगाव हुआ तो क्या हुआ, लोभ आया, इसके लिए मुझे ये भी चाहिए, उसके अपने लिए भी चाहिए, इसके लिए भी चाहिए, देह का भाना है ना, तो लोभ आया, लोभ आया तो फिर क्या हुआ, फिर जो बच्चे पैदा हुए उनके प्रति मोह आ गया, है ना, मोह आया तो फिर क्या हुआ, लोभ आया, मोह आया, अब उसको किसी ने छेड़ा तो क्या हुआ, क्रोध आ गया, है ना, नहीं समझ, कैसे आया ना, कैसे पैदा हुए, एक विकार कैसे पैदा हुए, फिर जो हमने इकट्ठा किया था ना, बच्चे हो गए इतने सारे, सुंदर सुंदर बच्चे हो गए, और पैसा, बड़ा सा मकान बना लिया, उसका अहंकार हो गया, सबकी शक्ल एक जैसी नहीं होती है, सबकी अकल भी एक जैसे नहीं होती, क्योंकि बुद्धि कहां रह गई, शक्ल रकल में फंस गई, तो फिर मेरी तो बहुत बढ़िया है ना, तुम्हारी तो अच्छी नहीं है ना, अहंकार आ गया ना। तो इस तरह से पांच विकारों का जन्म हुआ, काम, पहले काम आया, फिर पहले देवान आया ना, मन आते ही, मन के राजा बनते पहले देवान आ गया, और देवान आने से फिर क्या हुआ, ये पांच विकारों का जन्म हो गया, और पांच विकारों का जन्म होने से फिर क्या हुआ, काम विकार आया ना, तो आलस्य आया, अलबेलापन आया, इकट्ठा बहुत हो गया ना, अभी क्या करने का है, सब कुछ तो ठीक ठाक है, तो आलस्य अलबेलापन आ गया, फिर दूसरों में दोष निकालने की आदत आ गई, बदलने की भावना आ गई, इसने मेरे को ऐसे किया मैं भी इसको ऐसे करूंगा, इसने ऐसा किया मैं भी इसको ऐसा करूंगी, है ना, फिर शक अनुमान आ गया, ये मेरे पीछे जरूर मेरी प्लानिंग करता होगा, ये मेरे पीछे ऐसा कुछ करता, अनुमान लगाने के आधार पर चिंता भय आ गई, है ना, मोह आया तो चिंता भय आ गई, फिर अहंकार आ गया, और अहंकार के पास जल्दीबाजी आ गई, प्रेशर आ गए, ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना, ईर्ष्या द्वेष आ गए। तो इस तरह से काम, ये पांच विकार आए, और इस तरह से फिर जैसे जैसे विकार बढ़ते गए, तो सात एनर्जी क्या हुई, अब मन राजा बन गया। अब राजा जो आत्मा में थोड़ी सात गुण बचे थे ना, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियां, वो शरीर में पहुंचने कम हो गए, क्योंकि मन में बहुत सारी बातें भर गई, जो देखा सुना था वो भर गया मन में। तो इस तरह से जब हुआ तो हमारे अंदर ये जो है ना, हमारी स्थिति गिर गई। तो जब आत्मा शरीरों में, शरीर में वो एनर्जी जानी कम हो गई, पहले तो खूब जा रही थी, इसलिए हमारी काया कैसी थी, कंचन काया थी, सातों गुणों से भरपूर थी, एक कोशिका, इसलिए हम एकदम परफेक्ट थे। जब जैसे ही ये सात गुण कम हो गए, क्योंकि मन में बीच में क्या हो गया, मन में भर गया, ये मेरा लगाव आ गया किसी के प्रति, किसी के प्रति झुकाव आ गया, किसी के प्रति टकराव आ गया, ये इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा किया ना, इसको तो मैं दिखाऊंगा, इसको तो मार ही देंगे, खत्म करना है इसको तो, है ना, वो ना दबा पड़े होंगे, हाथी के पैरों के नीचे मरवा दिया, कुचलवा दिया, जमीन में गाड़ दिया, है ना, नहीं फांसी लगा दी, जेल में डाल दिया, है ना, राजाओं ने क्या किया, यही तो किया, नहीं किया। तो इस तरह से जब हमारे अंदर ये, इस तरह से हमारे अंदर सात गुण कम होने से फिर राजा मन के अंदर कुछ बातें भर गई, उसके कारण जो आत्मा से जो एनर्जी, आत्मा क्या करती है, आत्मा जो कुछ शरीर को देती है मन के माध्यम से देती है। जैसे मैं आपको कुछ देना चाहूं तो कैसे दूंगा, मेरी जेब में पेन रखा हुआ है, मैं कैसे दूंगा आपको, मुझे देना है आपको पेन, कैसे दूंगा, हाथ से दूंगा ना, आप कैसे लेंगे, हाथ से लेंगे। तो आत्मा जो कुछ लेन देन करती है आत्माओं से, वो कैसे करती है, मन के द्वारा करती है, है ना। तो आत्मा शरीर को, आत्मा के, अब मैं आता हूं सात गुणों पर, आत्मा के सात गुण हैं, सात एनर्जी का वो गुण है। पहला गुण है ज्ञान, पहला कौन सा गुण है, एनर्जी का वो ज्ञान, पहली एनर्जी जो ज्ञान है, वो ज्ञान आत्मा से निकल रहा है और बॉडी की कोशिकाओं पर पहुंच रहा है, एक तरह की आवाज है ये, जैसे बाबा ने कहा आज बाबा बाबा शब्द अनद नाद बन जाए, अनद बजता रहे बाबा बाबा बजता रहे, तो यहां से एक आवाज जा रही है, वो इसे एक साउंड है, वो भी जैसे होता है ना, एक तो साउंड हो गई, साउंड हो गई कानों में, साउंड से कहते हैं जो कानों में सुनाई दे, किंतु तो उससे भी जो नीचे और ऊपर की आवाज होती है उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जो उससे ऊपर की आवाज है ना, जो हमें सुनाई देते उससे ऊपर की आवाज को अल्ट्रासाउंड कहते हैं। हम कराते हैं ना अपना हार्ट, पेट का टेस्ट कराते हैं, पेट में ट्यूमर हो, गांठ हो, तो सोनोग्राफी कराते हैं ना, पथरी हो, गॉल ब्लैडर में पथरी हो, तो सोनोग्राफी क्या करती है मशीन, उसमें से रेज निकलती है, उस पथरी से टकरा के वापस आती है, तो उससे हमें पथरी का साइज पता चलता है, पथरी कहां पर है, पित्त की थैली में है, किडनी में है, कहां पर है, कोई ट्यूमर भी पड़ा हो, कोई कैंसर का फोड़ा हो गया हो पेट में। हार्ट की भी टेस्ट करते हैं ना, इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, वो भी सोनोग्राफी होती है, वो भी एक साउंड जाती है, साउंड को भेजते हैं अंदर मशीन से, और वो साउंड टकरा के वापस आती है उस दीवारों से, वहां से तो हमको पता लगता है कि हार्ट की दीवार कितनी मोटी है, या हार्ट में वाल बड़ा, हार्ट की वो चैम्बर बड़ा तो नहीं हो गया है ना, वो सारा कुछ नाप सकते हैं। इसे समुन्द्र की गहराई नापने तो कैसे नापते हैं, कैसे नापते हैं समुद्र की गहराई, एक आदमी इंची टेप लेके नीचे जाता है, नीचे जाके बैठ जाता है, फिर वो आवाज देता है, मैं देखो पानी और नीचे बैठ गया, अभी तुम नाप लो कितना हो गया ऊपर, ऐसे करते हैं क्या, कैसे करते हैं। जहाज शिप होता है, शिप के नीचे, शिप में वो नीचे एक मशीन से अल्ट्रासाउंड नीचे भेजते हैं, अल्ट्रासाउंड जाके जमीन से टकराती है और वापस टकरा के वापस आती है, उसकी स्पीड उसकी फ्रीक्वेंसी में पता होती है, तो उससे पता चलता है इतनी इतनी इस यहां पर समुद्र की गहराई इतनी है। शिप कैसे पता लगाते, शिप टकरा जाए, चट्टाने होती हैं, तो हर जगह वो अल्ट्रासाउंड काम करता रहता है, अभी कितनी दूरी है दिखाई देती रहती है कि हम कितना ऊपर हैं, जमीन से कितना ऊपर है, समुद्र में कितनी कितनी जमीन से ऊपर है, तो चारों तरफ से अल्ट्रासाउंड निकलती है, कई जगह कई इक्विपमेंट लगे होते हैं, तो हम कितनी दूर हैं, मान लो कुछ अंधेरे में जा रहा है, समुद्र में लाइट लगी होती है क्या, समुद्र में लाइट लगी होती है क्या, गवर्नमेंट लाइट लगवा रखी है, चलो सड़क पे दिखाई, लाइट तो वहां अंधेरा ही अंधेरा होता है ना, तो अल्ट्रासाउंड जाती रहती है और वो बताती है कि कितनी दूर पहाड़ कितनी दूरी पर है, चट्टान कितनी दूरी पर, नीचे कितनी दूरी पर और ऊपर सामने कितनी दूरी पर है, उससे फिर जहाज रास्ता बदलते हैं। चमगादड़ क्या करता है पता है आपको, चमगादड़ की आंखें खराब होती है, आंखें दिखाई नहीं देती चमगादड़ को, चमगादड़ अंधेरे में उड़ता है, कैसे उड़ता है, वो भी अल्ट्रासाउंड निकालता है, तो वो साउंड टकरा के उसको पता लग जाता है कि यहां पर सामने दीवार है, इसे तक फिर आने से पहले ही मुड़ जाता है ना। तो इस तरह से अल्ट्रासाउंड, ये एक तरह की साउंड यहां से निकलती है जो सारे शरीर में फैल रही है। क्या आवाज है वो, मैं आत्मा हूं, मैं हूं ना, है ना। तो जैसे ये साउंड जा रही, ज्ञान का सार है ABCD, क्या है ABCD, ये चार बातें सारा टाइम यहां से निकलती रहती है और सारी बॉडी की कोशिकाओं पर पहुंचती है। ये है ज्ञान। तो ये यहां से, और जब तक ये साउंड जाती रहती है तब तक हमारी कोशिकाएं काम करती है। जब वो साउंड, जब आत्मा निकल जाती है तो साउंड जानी बंद हो जाती है, शरीर मर जाता है। हाँ बताता हूं। तो जब तक, जब तो ये जो है इसी को कहते हैं अनदनाद। अनदनाद माना अनद, अनद माना बेहद, जो कभी ना बंद होने वाला, अनलिमिटेड, जो कभी ना बंद होने वाला हो, अनहद। नाद माना आवाज, इसी को राधा स्वामी वाले क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं ना, एक शब्द से सब जग उपजा है ना, एक शब्द से सब सब जग उपजा, कौन भले कौन कौन मंदे है ना, ऐसे है ना एक। तो मतलब शब्द, ये शब्द, ये शब्द है एबीसीडी, जिससे सारा संसार की उत्पत्ति होगी ना, इस शरीर की उत्पत्ति भी इसी से होती है, ये शरीर चलता भी इसी से है। तो ए फॉर आत्मा, ठीक है, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा है ना, सी फॉर कनेक्शन और डी फॉर ड्रामा। देखो मैं कोई बड़ी बड़ी बात नहीं बता रहा हूं, किंतु मैं सिंपल यही बात है, जब तक हम गहराई से नहीं समझते ना तो हमारा योग लगता नहीं है। ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा। तो ये यहां से एक मैसेज आ रहा है कि मैं अति सूक्ष्म, इस आत्मा से बाहर निकल रही है। इस कंप्यूटर खोलते ना, कंप्यूटर खोलते पहले क्या आता है, इसकी मेक क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसमें कितने रैम है। तो ऐसे ही यहां से मैसेज जा रहा है कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा उससे क्या संबंध है, ये संसार रूपी नाटक क्या है, ये है ज्ञान। तो यहां से मैसेज जा रहा है, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, तुम्हारा मालिक हूं, ठीक है, तुम्हारा मालिक बैठा है, बैठा है यहां पर ना, ये मैसेज जा रहा है ना, तभी सेल्स काम कर रही है। फिर मेरा, मेरा कौन है, मैं परमपिता परमात्मा शिव की संतान हूं, सारे विश्व का जो मालिक है उसकी संतान हूं। जैसे आप किसी को इंट्रोडक्शन दो अपना, तो कैसे इंट्रोडक्शन देते हो, कि मैं ये हूं है ना, और मेरा बाप यहां का पुलिस कमिश्नर है ना। अब सामने वाला क्या करेगा, क्या करेगा, मतलब उसको चुप हो जाएगा ना, मतलब कुछ डराने भी आया हुआ था आपको, ठीक है इसको तो बात नहीं करते हैं नहीं। हम क्या बोलते हैं, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, इसको कोई मार सकता है क्या, अति सूक्ष्म जो दिखाई भी देगा नहीं, इसको काट नहीं सकते, मार नहीं सकते, ये बूढ़े नहीं, बूढ़े नहीं हो सकता है ना। और मेरा बाप कौन है, सारे विश्व का पिता, परम पिता परमात्मा, कहां रहने वाला, परम धाम में रहने वाला, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, वो भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, उसको भी कोई मार नहीं सकता, ऊंचे से ऊंचा है, पवित्र से पवित्र है, मीठे से मीठा है नहीं? तो वो मेरा बाप है, उसके ऊपर कोई है ही नहीं, वो जिसका कोई बाप नहीं है, वो जिसका कोई टीचर नहीं है, वो जिसका कोई गुरु नहीं है, तो वो मेरा बाप है। इसके बाद क्या हुआ, अच्छा अब ये तो बता दिया, आप खाली ये बता, तीसरी क्या बात बताई, कि मेरा उससे कनेक्शन क्या है, कनेक्शन माना मेरा उससे संबंध है, संबंध क्या है, वो खाली मेरा मां नहीं है, बाप भी है ना, कभी मेरा बाप तो कमिश्नर है, चाचा मेरा क्या है, चाचा यहां का एसपी है, ठीक है है ना, और मेरा जो मां है यहां की कलेक्टर है नहीं। अब क्या हुआ, सामने वाला क्या हुआ, उसकी बोलती बंद हो जाएगी ना। तो ऐसे ही ये शरीर है ना, शरीर कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, हार्ट कहता है अरे भाई मैं नहीं काम करता है ना, पेट कहता है आजमा नहीं चलेगा है ना, पैर कहते मैं नहीं चलता, कैसे नहीं चलेगा, तेरी क्या हिम्मत है, नहीं चलेगा नहीं। तो वो जो है सब कुछ करने वाला सर्वशक्तिमान है ना, वो कौन है, मेरी मां है, मेरा बाप है, है ना, मेरा शिक्षक भी टीचर भी वही है, सतगुरु भी मेरा वही है, और क्या है, और क्या है, वो मेरा बंधु भी है, मेरा भाई भी है ना, और मेरा दोस्त भी है, और मेरा साजन, सर्जन मतलब साजन भी मेरा वही है, मेरा प्रेमी प्रेमिका जो मर्जी समझो वो मेरा वही है, सर्जन भी वही है, डॉक्टर भी मेरा वही है, और मेरा बच्चा भी वही है। नौ संबंध मुख्य है हमारे, है ना, उसके साथ संबंध बहुत सारे, सारे संबंध जो मर्जी चाहे बना सकते हो, किंतु नौ संबंध हमारे मुख्य है उसके साथ। एक एक संबंध की अनुभूति करो, गहराई में चले जाओ, मां का संबंध कैसे है, बाप का संबंध कैसे, मां के संबंध से क्या दिया, मां के संबंध से पैदा होते ही इसने क्या दे दिया, बाप ने, शिवबाबा ने हमको दिव्य बुद्धि की लिफ्ट दे दी, क्या दे दी, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट। लिफ्ट क्या होती है, बैठो बटन दबाओ पहुंच जाओ, कहां पहुंच जाओ, बाप दादा की गोद में पहुंच जाओ, है ना, सूक्ष्म वतन में बैठे ना ब्रह्मा बाबा, वो लिफ्ट कहां जाती है लेकर के हमको, सूक्ष्म वतन में लेकर नहीं जाती है। अब आपको कुछ धरती पे उतार दे, धरती पे उतार दिया, कहां कहां उतारा, आना है माउंट आबू, उतारा कहां पर, अमेरिका में, अच्छा अब दिल्ली, दिल्ली कैसे आओगे, अमेरिका तो, अमेरिका भी तो धरती पर ही है ना, नहीं, अब अमेरिका से दिल्ली कैसे आओ, यहां माउंट आबू कैसे आओगे, वो कहां उतारा उसने, बाबा कहां उतार, वो ये लिफ्ट कहां उतारती है, सीधी बाबा की गोद में उतारती, कहां उतारती है, मैं सीधी, आपको कैसी गाड़ी आती हो, सीधा मेडिटेशन हॉल में आकर उतारे तो नहीं, आपको सीधी भी नहीं चढ़नी पड़े, नहीं तो वो जो लिफ्ट है, ऐसी लिफ्ट है, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट है, जो एक सेकंड में कितनी देर कितनी लेती है, एक सेकंड में कहां जा गए, सीधे पहुंच गए सूक्ष्म वतन में, बाबा की गोद में पहुंच गए। ये दिव्य बुद्धि की लिफ्ट है जो हमें जन्म से मिली है, पैदा होते ही ब्राह्मण बनते ही अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को समझते ही कि ये मेरा बाप है, मैं उसकी बच्चा हूं, ये निश्चय करते ही बन गई गिफ्ट। इस लिफ्ट का ईंधन क्या है, क्या है ईंधन, शुद्ध संकल्प, शुद्ध विचार। सबसे अच्छा शुद्ध विचार क्या है, मैं एक आत्मा दे नहीं, सबसे अच्छा शुद्ध विचार ये। तो जितना इस गहराई से इस शुद्ध विचार को बार बार रियलाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक चमकता सितारा हूं, मैं इस देह का मालिक हूं, मैं परमात्मा के संतान हूं, जितना इस गहराई में जाते जाओ, गहराई में ये शुद्ध संकल्प, ये लिफ्ट काम करती रहेगी। मेरा हर संबंध उसके साथ है, इनके साथ नहीं, इन बच्चे के साथ नहीं, पति के साथ नहीं, पत्नी के साथ नहीं, इस मां के साथ नहीं, बाप के साथ नहीं, उसके साथ। वो है मेरी मां, वो है मेरा बाप, वो है मेरा बच्चा, इनके साथ तो हिसाब किताब है। पिछले जन्म का लिया हुआ ना दुख, दिए दुख लिया हुआ है, दुख दिया है, दुख मिल रहा है वापस, ब्याज के साथ, है ना, ब्याज भी तो लगता है ना, सुख दिया हुआ है, सुख मिल रहा है, इसमें एहसान की बात नहीं है, है ना। और डी फॉर ड्रामा, संसार रूपी नाटक है ये, हम आत्मा इसमें एक्टर है, और हर आत्मा कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, और मेरा मीठा बाबा इसका डायरेक्टर है, कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट इसकी डायरेक्शन कर रहा है। डायरेक्टर कौन है इस ड्रामा का, मेरा बाप, फिर कंफर्मेशन हो गई, कौन है इसका डायरेक्टर, वो कुछ हेराफेरी करेगा क्या, एक्यूरेट डायरेक्शन करेगा, जिसमें मेरा कल्याण समाया वही डायरेक्शन करेगा। इसलिए जो हुआ, अब मान लीजिए कोई मुझे दुख दे रहा है, मैं बाबा को दुख देने वाला कौन होगा, जो प्रवृत्ति मार्ग वाले बैठे जाए तो प्रवृत्ति वाले बैठे ना, आपका कौन दुख देगा बताओ, आपको माताओं को दुख कौन देगा, कौन देगा, आपकी सास देगी या तो, है ना, या आपका पति देगा, है ना, नहीं, या बच्चा देगा, या बच्ची देगी, या बहू देगी जो बड़ी हो गई, नहीं, ये तो दुख देंगे, तो वो दुख देने, और आप बाबा बाबा को बोलो अमृत वेले, बाबा ये देखो बहुत दुख देती है मेरी बहू मेरे को ना, इसको ठीक कर दो ना आप, तो बाबा क्या करेगा, ठीक कर देगा उसको, नहीं करेगा ठीक, बाबा क्या करेगा, बच्चे दुख, तुमने दुख दिया हुआ है वो वापिस दे रही है, तुम्हें सहन शक्ति देता हूं, तुम सहन कर लो चलो, ताकि वो पूरा भी हो जाए, हिसाब किताब भी पूरा हो, दुख दिया था वापस में मिल रहा है और आप सहन भी कर ले, तकलीफ भी नहीं हो। तो बाबा परखने की शक्ति दे दी, निर्णय करने की शक्ति दे दी। तो इस तरह से बाबा हमको परिवर्तन करता जाता है। तो इसलिए अभी तक जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, इसलिए टकराव की बात नहीं है। बहू से मैं टकराव कर लूं, ये दूसरी बहू बहुत अच्छी मेरी सेवा करती है, इससे लगाव हो जाए, उसके बगैर मैं रह नहीं सकती या उसके बगैर मैं रह नहीं सकता हूं, नहीं। सुख इसको सुख दिया हुआ, पिछले जन्म इसे सुख दे रही है, इसमें एहसान की बात नहीं है, उसे चिपकने की बात नहीं है कि इसके बगैर मैं नहीं रह सकता है, रह सकती है, रह सकता नहीं, उसका पार्ट वैसा है। तो इसलिए हमको क्या करना है, जो हुआ अच्छा हुआ, अभी तक क्या हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, नहीं तो अधिकतर टाइम कैसे जाता है हमारा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, आप बात मत पूछो मैंने कैसे दिन काटे, है ना, है ना। अच्छा बोलने की बात भी नहीं, अंदर अंदर ही चलता रहता है, उसने मेरे को ये दुख दिया, उसने मेरे को दुख दिया, मेरी ननद ने मुझे इतना दुख दिया, मेरे इसने दुख इतना दुख दिया, मेरे भाई ने इतना दुख दिया, मेरे को इसने दुख दिया, इसने दुख दिया, इसने दुख दिया, है ना, इतनी बीमारियां मेरे शरीर में आ गई, है ना। तो ये जो है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा, और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। तो जब इस तरह से जब हम करते हैं एबीसीडी को, जितना ज्यादा रिवाइज करते जाओ और जितना अधिक रियलाइज करते जाओ, रियलाइज माना, अब मैं आता हूं इस पे, जैसे आज की मुरली आपने सुनी ना, हम रोज मुरली सुनते हैं ना, और मुरली के 6 स्टेप है मुरली में ना, हम मुरली को जब हम सुनते हैं तो उसमें 6 स्टेप है। पहला है श्रवण, श्रवण माना सुनिए अपने मुरली, मुरली आपने सुनी, बैठ के मुरली सुनी, तो मुरली सुनने में आपको, अब मुरली कब अंदर जाएगी, आप घर में बैठ के मुरली पढ़ लो अंदर जाएगी क्या, नहीं जाती। संग और वातावरण, वही जब मधुबन में बैठ के मुरली सुनते हो, सेंटर पे जाके मुरली सुनते हो तो ज्यादा मुरली याद रहती है, वही घर में पढ़ लो तो फिर याद नहीं रहती है। तो संग और वातावरण हमारे पास, हम किस संग में बैठ के मुरली सुन रहे हैं, कैसे वातावरण बैठ के सुन रहे हैं। तो जो हमारी अंदर श्रवण कब होगा, जब अंदर सुनी बात अंदर कब जाएगी, जब हम उसको उसी वातावरण में बैठ के सुनते हैं। सेंटर पे कई बहने भाई बहने सेंटर पे वो टेलीफोन पे मुरली सुन लेते हैं, कई लोग मुरली घर में मंगा के पढ़ लेते हैं, हफ्ते में एक बार जाएंगे, सत्युग में भी हफ्ते में एक बार आ जाएंगे, नहीं ऐसे। तो हम जो है वो जो मुरली अंदर जानी चाहिए ना, तो श्रवण करना सेंटर पे करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब श्रवण कर ली, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कैसे मुरली हमारे अंदर जाएगी। आपने दूध लिया गाय का, गाय का या भैंस का दूध लिया, अब आपको मक्खन निकालना है उसका, तो कैसे निकालोगे बताओ, दूध को अभी आ गया उसको बिलो लो, निकलेगा मक्खन नहीं। दूध को पहले गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करने के बाद फिर क्या करते हैं, उबाल आएगा तब उतारते हैं, उतार के फिर ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद क्या करते हैं, फिर खट्टा मिलाते हैं, तो माताओं को नहीं पता मुझे पता है ना, है ना, फिर खट्टा मिलाते हैं ना, खट्टा बना दही थोड़ा डालते हैं ना, दही डाल के फिर क्या करते हैं, दही बनानी ना उसकी, दही मिलाएंगे, दही मिला के फिर उसको क्या करते हैं, चम्मच से हिलाते हैं, डाल के रख दो तो फिर क्या, फिर दही जमेगी नहीं जमेगी, नीचे नीचे जम जाएगी ऊपर नहीं जमेगी, मिलाना पड़ता है, फिर मिला के उसको फिर रख देते हैं, है ना, रख देते फिर क्या होता है, कितने देर रखते हैं, 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा ना, तो फिर सुबह दही बनती है। दही की डेफिनेशन पता है क्या है, दही को इंग्लिश परिभाषा क्या है, मिल्क, मिल्क मतलब दूध, मिल्क स्लीपिंग विद कर्ड, है ना, इन द नाइट मॉर्निंग टाइट, है ना, उसे कहते दही, है ना, ठीक है, मिल्क स्लीपिंग विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इन द नाइट मॉर्निंग टाइट, वो क्या बन गया, दही, है ना। तो दही बनाने के लिए क्या करना, दूध में खट्टा मिलाओ, फिर उसको जमाओ, फिर वो सुबह दही बनेगा। अब दही बन गई फिर क्या करोगे, फिर दही को मथना पड़ता है, मथनी डालनी पड़ती ना अंदर, आप हाथ से ऐसे से करो तो क्या होगा, मक्खन निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, मथाने से उसको करना पड़ेगा। अब मथाने से करते रहो, फिर उसके बाद फिर मक्खन निकलता नहीं है, फिर क्या करते हो, ठंडा पानी डालते हैं उसके अंदर, है ना, ठंडा पानी डालते हैं ना, ठंडा पानी डालने के बाद फिर वो मक्खन निकलेगा। ठीक है, अब मक्खन निकल गया, मक्खन निकाल के साइड में कर दिया, अब मक्खन रख दो, आप दो दिन पड़ा रहे बाहर तो क्या होगा, खराब हो जाएगा नहीं। तो मक्खन को भी फिर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, है ना। गर्म करने के बाद क्या करते हैं, गर्म करके फिर वो उसमें से जो थोड़ा छाछ निकलती है ना, ऊपर छाछ निकाल के फिर मक्खन को डब्बे, घी को डब्बे में डाल के सील बंद कर देते हैं ना। अब ये क्या बन गया आपका, घी। घी कितने दिन काम आएगा, साल भी खराब नहीं होगा। ठीक है, नहीं इसी तरह से आपको जो घी बनाना है ना दूध से, ये मुरली हमारा ज्ञान दूध है। ठीक है, तो दूध ठीक ढंग से पियो, ये नहीं कि आधा बाहर आधा अंदर, ऐसे नहीं करो। कई लोग ऐसे भी करते हैं, मुरली सुनते हैं ना, यहां पर बीच में सो जाते हैं ना, तो मतलब आधा दूध अंदर आधा अंदर बाहर, नहीं ना। मुरली सुनते हैं सो जाते ना क्लास में, देखो एक बार मैं तो हम ऊपर सामने से देखते हैं ना, तो सो जाए साथ में, हमारे साथ वाला भी सो जाता है ना, तो उसको फिर उठाना पड़ता है ना। तो बहुत अटेंशन से बाबा की गोद में, ये बाबा का लव लेटर है, चार पेज का लव लेटर है ना, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, है ना। और लव लेटर कहां रखते हैं वैसे, कहां रखते हैं, है ना, जेब में रखते हैं ना, ये तो ऐसे जेब में, ये जैसे आज की मुरली ना, मैं हमेशा जेब में रखता हूं, है ना, तो इसको जेब में रखते हैं। और लव लेटर क्या करते हैं, जैसे मौका मिलता है फिर क्या करते हैं, बार बार पढ़ते हैं ऐसे ऐसे, वो छुपा के पढ़ते हैं, दिखा के नहीं पढ़ते हैं, है ना। यूं निकालेंगे, जैसे मौका मिलेगा यूं करेंगे, फिर छुपा के अंदर डाल देंगे, फिर निकालेंगे, मौका मिला फिर डालेंगे, फिर मुस्कुराते हैं, लव लेटर देख के मुस्कुराते भी हैं, है ना, कोई देखे नहीं ये भी देखते हैं ध्यान से, नहीं ऐसा होता, फिर जेब में रख देते हैं, अकेले में पढ़ते हैं, दूसरे के सामने नहीं, कभी नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसे ही ये मुरली जो है ना, सुबह बहुत प्यार से सुनो बाबा का लव लेटर मेरे लिए, बाबा की गोद में बैठ के सुनो, है ना। जिसका लव लेटर पढ़ते हैं ना, उसके उससे वो सामने आंखों के सामने होता है, तो उस तो इस तरह से लव लेटर सुनो। फिर दूध गर्म करना, अब गर्म करना माना इसको फिर चलते हुए, जैसे अभी मुरली सुन के आए ना रास्ते में, तो फिर रिवाइज करो, रिवाइज करना माना गर्म करना, मतलब फिर श्रवण के बाद मनन, मन माना रिवाइज करना, मनन माना दोबारा रिवाइज करो, दो बार तीन बार। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सुबह 5 बजे अमृत वेला करके मुरली पढ़ते हैं, फिर 7 बजे मुरली सुनते हैं, फिर मुरली आते हैं ना घर से, मां से क्लास से चल के आते हैं, घर की तरफ आते हैं, कमरे में आते हैं, तो फिर मुरली हाथ में ही होती है, जेब में होती है, इन तो डायरी भी होती है, फिर उसको दोबारा निकाल के एक लाइन पढ़ी, फिर उसको रिवाइज करते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे, फिर अपने घर में आएंगे, फिर वॉकिंग करते से 45 मिनट वॉक करेंगे, फिर मुरली का एक एक पॉइंट को रिवाइज करेंगे, फिर तो यही कह रहा था मनन, बार बार रिवाइज कर, गर्म कर दिया हमने, अभी गर्म हो गया दूध, गर्म हो गया ना, तो अब रिवाइज हो गए। फिर मनन के बाद चिंतन, चिंतन माना, चिंतन वाला चिंता लगाओ, चिंता क्या लगाओ, बाबा ने तो ये कहा आज और मेरे अंदर तो ये बात है, बाबा ने कहा बच्चे मीठा बोलो, मैं तो कभी कभी गुस्सा करता हूं, बाबा ने कहा बच्चे एकदम पवित्र रहो, कभी कभी भी किसी की तरफ, सबके प्रति कैसी धारणा होनी चाहिए, 100% पवित्र होना, संपूर्ण पवित्र होना चाहिए, एकाग्रता की शक्ति, मन जहां टिका दिया वहां टिक जाना चाहिए, तो मेरा मन तो नहीं टिकता है, मेरा मन तो कभी इधर भागता है कभी इधर भागता है। तो ये चिंतन, बाबा ये कहता है मैं ये करता हूं या तो मैं ये करती हूं, तो ये चिंतन कहलाता है। ठीक है, एक एक बात बाबा की मुरली के, एक सारी मुरली एक साथ नहीं पढ़ी जाती है, दो दो लाइन, जैसे बाबा ने मीठे बच्चे बताया, आज की जैसे धर्म वाली बात की, बाबा ने फिर दीदी से बात की एकाग्रता की शक्ति पर, फिर मधुबन निवासी से नाराज के ऊपर बात की, नाराज नाराज कौन, त्रिकालदर्शी कौन होते हैं, है ना। फिर बाबा ने बताया कि कैसे बच्चे, रॉयल फैमिली के बच्चे कभी मिट्टी, देव विमान की मिट्टी में नहीं खेलते हैं, कभी मिट्टी खाते नहीं है, खेलना माना मिट्टी में खेलना माना संकल्प में, संकल्प लाना देव विमान का, और खाना माना वाणी से या कर्म से करना, है ना, तो उसे कहते खा लेना, मिट्टी खा लेना, तो वैसे नहीं करते, तो मैं तो खा लेता हूं कभी कभी, ईगो में आके बोल देता हूं, है ना, मैं तो कभी देव विमान में कैसा काम कर देता हूं, तो बाबा नहीं, बाबा तो ये कहता है मैं तो नहीं करता हूं। आज का वरदान कौन, क्या था वरदान, था ना आज का, क्या था, क्या था, निरंतर योगी, है ना, निरंतर उस योगी और सदा पवित्र के द्वारा सर्व विकारों से बचने वाले, सर्व विकार को विजय प्राप्त करने वाले, है ना, सदा सदा शक्ति स्वरूप और सदा पूज्य स्वरूप भव। तो मैं तो सदा ऐसा हूं क्या, सदा सदा योगी में, योगी स्टेज में रहता हूं क्या, सदा पवित्र रहता हूं क्या, सदा शक्ति स्वरूप हूं क्या, फिर सदा प्रभु के साथ ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो क्या होगा, है ना, सारा भाग्य हमारे पीछे परछाई के रूप में सामने आएगा। तो बाबा की एक एक बात को याद करो, रिवाइज, इसे कहते हैं मनन। फिर चिंतन लगाओ अपने साथ, चिंता लगनी चाहिए, अरे बाबा तो इस 36 साल पहले ये कह रहा है और मैं तो अभी भी ऐसा हूं, मैं तो अभी भी ऐसी हूं, इसे कहते हैं चिंतन। ठीक है, अब चिंतन करते करते फिर सो जाओ, बाबा को चिट्ठी लिखो, सोने का लेटर लिखो, पोता मिल देते ना, बाबा मैं तो, बाप ने ये कहा था, मैं तो बहुत कोशिश की, आज सारा दिन कोशिश करता रहा कि मैं मुस्कुराता रहूंगा, एकदम संपूर्ण पवित्र रहूंगा, लाइट चमकती रहेगी, है ना, फिर भी मैं कर, आपने कहा था मैंने कोशिश की कि तो इतना इतना कर पाया, इतना नहीं कर पाया। बाबा आपने कहा था मन बुद्धि को एकाग्र रखना, मैं थोड़ा तो अटेंशन रखा, अच्छा रहा आज, कि तो इतना हुआ इतना नहीं हुआ। फिर बाबा आपने कहा था मिट्टी, देह अभिमान की मिट्टी मत खाना, मिट्टी में मत खेलना, थोड़ा तो मैं खेला, है ना, थोड़ा संकल्प तो आया, है ना, है ना, थोड़ा तो मिट्टी खाई, थोड़ी तो खाई, ज्यादा नहीं खाई, थोड़ी सी खाई, है ना। तो बाबा को बताओ, बाबा थोड़ी मिट्टी तो खाई, तो सच सच बताएंगे ना। तो उस चिंतन में सो गए। फिर अमृत वेला क्या करना है, अब मथानी चाहिए ना, अब दही जमा दी, इसी दही के साथ सो जाओ, खट्टा मिला के सो गए ना अभी, है ना, ठंडा करके दूध गर्म किया ना, फिर ठंडा किया, ठंडा करके चिंतन खट्टा डाल दिया, अब उसके बाद सो गए, सुबह दही जम गई, है ना। फिर अब क्या करो, अब शिव बाबा से उठे ना, सुबह सुबह बाबा कहते सवेरे सवेरे उठे विचार सागर मंथन करो। अब बाबा को क्या करो, बाबा बाबा को संकल्प देके सोए ना, तो बाबा क्या करेगा, मथानी चलाएगा, है ना। तो मथानी चलाएगा तो फिर बाबा क्या करेगा, बाबा क्या करता है, बच्चे तुम तो ये बनने वाले हो, ठंडा पानी डालता है ना, बच्चे तुम तो अभी ये बात कर रहे हो, तो तुम सोचते मैं ऐसा नहीं बन सकता, देखो बच्चे तुम तो ऐसे बनने वाले हो, तुम तो देखो तुम्हारा भविष्य रूप देखो ऐसा है, ये फरिश्ता रूप है तुम्हारा, सबकी हजार लाखों की सेवा कर रहे हो, बच्चे तुम तो ऐसे देवता देवी देवता बन के बैठ, तुम्हारी पूजा हो रही है, देखो मंदिर में कितनी पूजा हो रही है, सत्यों में देखो कितना बड़ा महल है तुम्हारा, तुम तो इतने दुखी रहते हो हर समय पैसे पैसे के लिए, तुम्हारा तो इतने सोने सोने हीरे के जवाहरात लगे हुए, कितने बढ़िया बढ़िया। तो बाबा दिखाता है, बच्चे तुम किसके पीछे लगा हुआ है, देवान के ऊपर, ये तो कुछ भी नहीं है, एकाग्रता देखो तुम्हारी नजर कैसे टिकी हुई है, देखो सत्युग में तुम अभी क्या बात कर रहे हो। तो बाबा फिर हमें दिखाता है, मक्खन दिखाता है, है ना, तो मक्खन वो मथ के दिखाता है ना, ठंडा पानी डाल के मथ के दिखाता है। हम सोचते नहीं हो सकता है, बाबा 30 साल हो गए करते करते, हुआ ही नहीं अभी तक ना, 20 साल हो गए बाबा ज्ञान में मुरली सुनते सुनते, अभी भी गुस्सा आता है, अभी भी जल्दी होती है, अभी भी चिंता करता हूं, अभी भी गुस्सा, अभी भी मन परेशान हो जाता है। फिर बाबा दिख नहीं, बच्चे देखो ये देखो, है ना। तो ऐसे फिर मंथन, फिर मक्खन निकला, ठीक है, तो ये मक्खन निकला। फिर मक्खन निकलने के बाद क्या करो, अब मक्खन गर्म करना पड़ता है ना, गर्म करना और रिवाइज करना। अब जब नहाने जाओगे, भाई लोग शेव करते हैं, ब्रश करते हैं, है ना, नहाते हैं, तो वो टाइम फिर दोबारा से इसको रिवाइज करो, जो मक्खन मिला ना उस स्वरूप जो बाबा ने बताया ना, उसको रिवाइज करो, बच्चे मैं तो ये बनने वाला हूं, मैं तो ऐसा होने वाला, बाबा ने ये सोल्यूशन बताया इस बात का। बाबा ने कहा बच्चे तू ऐसा करता है ना रोज, तो इसलिए तेरे को ये तेरी कमजोरी नहीं छूटती, बच्चे तू रोज टीवी देखता है ना, अखबार पढ़ता है ना, इसलिए तेरी कमजोरी नहीं छूटती, बच्चे तू इसके साथ उस दोस्त के साथ रहता है ना, उस बहन के साथ उठते हो ना तुम, बैठते बैठते हो ना उस बहन के साथ, बैठते बैठती हो उस माता के साथ, इसलिए तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारे अंदर बनी है, तुम उसको अपना समझती हो ना, इसलिए तो वो तुमको मैं नहीं मिलूंगा, तुम्हारा एक कमजोरी नहीं छू, बाबा बता देता है ये मंथन, बाबा मक्खन दे देता है। तुमको पहले भी कहा था मैंने ये बात ऐसे कही थी, उस दिन भी याद दिलाई थी, उस दिन भी याद दिलाई थी, देखो अब ये बात मैं खुद दोबारा कह रहा हूं। तो उस मक्खन को फिर गर्म करो, गर्म करते 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 फिर क्या होगा, फिर उसी में फिर थोड़ा सा सैर करो, मुरली सेंटर पे जाओ, तो इसे कहते हैं सिमरण। तो क्या हुआ, श्रवण, मनन, चिंतन, मंथन, फिर सिमरण। मंथन के बाद मक्खन निकला, फिर उसका सिमरण करो बार बार मक्खन का। फिर सिमरण करने के बाद फिर क्या होगा, फिर वो हमारे स्मृति में टिक जाएगा, मतलब डब्बे में बंद होकर सील बंद हो जाएगा, ठीक है, अब वो प्रॉपर्टी बन गया 250 रुपए किलो का, नहीं क्या भाव है आजकल, 500 रुपए किलो, अच्छा रेट बढ़ गया, मैं तो हमने तो खैर हम तो मधुबन में खाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कितने पैसे का आता है ना, मधुबन में आता है बन के ना, हमारी अपनी गाय है ना मधुबन में शांतिवन में, तो वहां गांव से मतलब मक्खन दूध में होता है, फिर दूध वाले मक्खन बना के दे जाते हैं ना, घी दे जाते हैं, हमें तो कभी मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो खरीदना नहीं पड़ता है, स्वास्थ्य हमको पता नहीं। तो मतलब ये जो है सिचुएशन है, तो जब इस तरह से हम अभ्यास करेंगे तो मक्खन फिर वो स्मृति स्वरूप। तो आज की मुरली सुनने से पहले क्या हो गया, जो कल बाबा ने कहा था ना वो आज मेरे अंदर जमा हो गया, मैं उसका स्वरूप बन गया। तो ये है बाबा का कहना और बच्चों का करना। तो 6 स्टेप हो गए, कौन कौन से याद है बताओ दोबारा से। श्रवण, मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण और फिर स्मृति स्वरूप, और फिर मुरली दोबारा सुनो अगली मुरली, ठीक है। तो जब ऐसे हम एबीसीडी का चलता है हमारा, है ना, एबीसीडी। मुरली क्या है, मुरली कैसे शुरू होती है, बच्चे आत्मा समझ के बैठे हो, बाप याद है, तीनों तीनों रूप में याद करते हो, बाप टीचर सदगुरु के रूप में याद करते हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान याद है, सुदर्शन चक्र फिराते हो, तो यही तो एबीसीडी है ना, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा। तो यही तो बाबा की मुरली होती है। तो किंतु रोज की मुरली बहुत वंडरफुल होती है, इसलिए 21 जन्म में राजभाग पाना तो क्या करना चाहिए, कम से कम 21 बार मुरली रिवाइज करनी चाहिए। कितनी बार करनी चाहिए, कितनी बार, 8 बार पाना है तो 8 बार, और एक ही जन्म पाना हो तो 1 बार, ठीक है नहीं। सचमुच ये मुरली जो दादियां 75 साल से ज्ञान में, 76 साल से, हमारे लिए एग्जाम उनके लिए सेम नहीं है क्या, अलग अलग एग्जाम है क्या, उनके पेपर में क्या आने वाला है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, हमारे पेपर में क्या आने वाला है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। उसको टाइम, दादी कितना टाइम मिलेगा जाने का, पेपर करने का 1 सेकंड, और हमें कितना टाइम मिलेगा, नहीं हम नए स्टूडेंट है, हमें 5 सेकंड मिलेंगे, 21 सेकंड मिलेगा ना, नहीं। तो हमको इतनी पुरुषार्थ करना चाहिए, तो इतना अभ्यास करो, ठीक है। तो जितना ये एबीसीडी को रिवाइज करते जाएंगे हमारे अंदर पवित्रता आती जाएगी, तो ज्ञान से पवित्रता आती है। बाबा भी पहले ज्ञान का सागर फिर पवित्रता का सागर, तो दूसरी एनर्जी पवित्रता है, फिर पवित्रता आती जाएगी, फैलती जाएगी। पवित्रता आएगी तो शांति आएगी, शांति माना कम विचार, पॉजिटिव विचार और कम विचार। बस मैं पूरा करता हूं, आपको भूख लगी हो ना अभी, भूख लगी सभी को, अच्छा। तो शांति माना कम विचार, पॉजिटिव विचार कम विचार होते हैं, और जब विचार कम होते हैं तो हम शांति महसूस, ज्यादा विचार माना अशांति, और जब हम हमारे अंदर कम विचार होते तो फिर हमें क्या होता है, दूसरों की केयर करने का ख्याल आता है, हमें फील होता है मेरे को चाहिए ना, मेरे को ऐसा चाहिए ना, तो मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा ना, हाँ। तो शांति से फिर प्यार की फीलिंग आती है, शांति से क्या आएगा, प्यार माना केयरिंग विद डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, दूसरों की केयर करो साथ साथ उसको डिग्निटी भी, उसको आदर भी दो। मान लीजिए एक माँ है, एक अपने बच्चे की केयर तो करती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है, सब कुछ करती है, और बाहर से मैं बच्चे को डांटती रहे तो बच्चा क्या कहेगा, मेरी माँ क्या करती है, मेरे बहुत प्यार करती है क्या, नहीं, माँ के पास आना नहीं चाहेगा बच्चा। और एक पत्नी है, मान लो अपने पति की बहुत केयर करती है, खाना बनाएगी, सब कुछ करती है, बात बातें टोकती रहती है उसको, क्या पति क्या करेगा, क्या बोलेगा, मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है, घर में घुसना नहीं चाहेगा, नहीं। तो केयरिंग डिग्निटी, ये भले मेरा बच्चा है किंतु अलग आत्मा है, राजा बच्चा है, राजा मेरा, राजा राजा बेटा है मेरा, ऐसा है मेरा ऐसा, तो वो फिर आपको समझेगा प्यार। आप कितनी मर्जी केयर कर लो किंतु उसे, उसको राजा नहीं कहोगे तो क्या, वो क्या होगा, उसको डिग्निटी, उसको आदर करो बच्चे का, अपने पति का, अपने पत्नी का, अपने माता पिता का, सास ससुर का, भाइयों बहनों का, पड़ोसियों का, टीचर का आदर करो। केयर तो करते हो, कई लोग हम खूब सेवा करते हैं किंतु आदर नहीं करते, तो लोग हमसे प्यार की अनुभूति नहीं कर पाते। तो जब हम केयर के साथ आदर करते हैं तो उसको कहते हैं रूहानी प्यार। जब आत्मा समझ के दूसरे को केयर करते हैं तो हम रूहानी प्यार पैदा कर सकते हैं। तो रूहानी प्यार से हमें क्या आता है, अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होती है, अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होने से फिर आनंद की अनुभूति होती है, और फिर आनंद की जहां अच्छी चीज में अनुभूति होती है उसको हम परख लेते हैं ये ठीक है, उससे परखने की शक्ति आती है, जिसमें आनंद आया ना इस बात में उसको हम परखते हैं ठीक बात है। जिस चीज में आनंद आ गया उसके लिए क्या करते हैं पता है आपको, जैसे लोग, मैं तो दुनिया की बात करता हूं, अभी सिनेमा हॉल होता ना पहले, अभी तो हम ज्ञान में आ गए है ना, पहले ज्ञान पहले क्या होता था, वो तो झूठा आनंद था, फिल्म में तो झूठा आनंद होता है ना, उस थोड़ी देर 2 घंटा उसमें बैठने के लिए, हंसने के लिए या शोर मचाने के लिए लोग कितना परखते हैं, है ना, निर्णय कर लेते हैं कि यही ये फिल्म देखनी है, यही शो देखना है ना, पहला शो देखेंगे है ना, है ना। विस्तार को सार में सारा काम करके छोट माताएं काम करती है ना, सारा काम जल्दी जल्दी कर लेंगी, फिल्म में जाना है तो जल्दी जल्दी कर लेंगे ना, नहीं मुझे कुछ नहीं करना, सब काम हो गया हो गया हो गया, वैसे कहेंगे काम काम नहीं हुआ, बहुत काम पड़ा है ना, समेट लेंगी है ना, सहन भी सब कुछ कर लेंगी, लाइन में लाइन लगे रहेंगे, आजकल तो लाइन नहीं लगती फिल्मों के, पहले तो बहुत लाइन लंबी लंबी लाइन लगती थी, सब कुछ सामना कर लेंगे, संभालेंगे, सहयोग भी कर लेंगे, नहीं तो ऐसे ही जिस चीज में आनंद आता ना, बाबा के साथ आनंद आ गया ना एक बार, वो अतिंद्रिय सुख की अनुभूति हो गई ना, तो क्या हुआ, अब उसके लिए परखते हैं, यही मेरा एक मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, निर्णय कर लिया, अब चाहे कोई सबको छूट जाए, बाबा को नहीं छोड़ूंगी, बाबा को नहीं छोड़ूंगा, इसके लिए विस्तार को सार में समेट लिया, विस्तार को सार में ले आए, नहीं मुझे बस बाबा के साथ, जैसे ही मौका मिला, जैसे आशिक माशुक होते ना, जैसे ही मौका मिला लग गए टेलीफोन पे बात करने, है ना, जैसे ही मौका मिला बस ऊपर पहुंच, सूक्ष्म तन पहुंच गए, परम धाम में पहुंच गए, समेट लिया, समेट के वहां पहुंच गए, सहन कर लिया, घर वाले तंग करते हैं, माँ तंग करती है, बच्चे तंग करते हैं, पति तंग करता है, पत्नी तंग करती है, सहन कर लिया, चलो थोड़ी देर मुंह वो आर्टिफिशियल रोके भी दिखा दिया, चलो ताकि वो चुप हो जाए, है ना, चलो सहन भी कर लिया, सामना भी कर लिया, समा भी लिया, बोलेंगे नहीं बोलेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, चुप इसके सामने बोलने की आवश्यकता नहीं है ना, कुछ ना कुछ मेरे को एक काम कर दो फिर तुम चले जाना, सहयोग भी कर लिया, तो ये जब आनंद जिस चीज में आया ना उसके लिए फिर सब कुछ कर लेते हैं, तो ये सात एनर्जी है जिससे हमारा शरीर चलता है, तो ये जो है आत्मा सातों एनर्जी से शरीर को चलाती है, कि तो एक एनर्जी स्पेशल दिमाग के लिए ज्ञान, जितना अधिक ज्ञान है ना एबीसीडी उतना दिमाग अच्छा काम करता है, इससे दिमाग को कंट्रोल रूम कहते हैं, सारी बॉडी का कंट्रोल करता है, तो ज्ञान से ही सारा कुछ है, ज्ञान से ही पवित्रता है, फिर आंख नाक कान मुख इम्यून सिस्टम बीमारी से लड़ने का सिस्टम, तो ये हमारा पवित्रता से चलता है, फेफड़े शांति से चलते हैं, जितनी शांति उतना सांस अच्छा आएगा, सांस की बीमारी ठीक हो जाएगी, जिनको डर लगता है ना हर बात में डर चिंता रहती है उसको सांस की बीमारी हो जाती है, जल्दी हो जाती है, प्यार हार्ट प्यार से चलता है, जितना प्यार हार्ट में बहेगा उतना हार्ट की नसें में ठीक खून बहता रहेगा, हार्ट की आर्टरी बंद हो गई तो खूब प्यार प्यार के सागर से प्यार लो और बाबा की याद में रहो, प्यार से हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाएगी, तो जितना ज्यादा प्यार, प्यार का मतलब खाली प्यार शब्द में नहीं, प्यार सच में प्रैक्टिकल में प्यार, रूहानी प्यार, हर एक आत्मा के प्रति, किसी के प्रति लगाव ना हो, किसी के प्रति झुकाव ना हो, टकराव ना हो, तब है प्यार, हर एक को आत्मा देखना, ये ज्ञान से प्यार है, आएगा तो दिमाग से ही ना, तो ज्ञान से प्यार है, ज्ञान से पवित्रता है, ज्ञान से ही शांति है और ज्ञान से ही सुख है, लिवर और पेट के लिए, आंतों के लिए, तो जितना अच्छा जितना खुश रहोगे ना, खुशी आएगी पेट से, पेट में उतना हजमा अच्छा हो जाएगा, तो इसलिए कहते खुशी जैसी खुराक नहीं, जिगर अच्छा काम करेगा, आनंद, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड पैराथायराइड पेनक्रियास डायबिटीज की बीमारी एड्रेनल ग्लैंड, ये सब बीमारी क्यों उत्तम हो, क्योंकि थायराइड काम की हमारे आनंद नहीं रहता, इससे थायराइड की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, तो जब जितना आनंद में रहोगे, डायबिटीज आपको है थायराइड की बीमारी, आनंद में रहो, जो माताएं सेंसिटिव होती है थोड़ी थोड़ी बात पे फील कर लेती है, रोना शुरू कर देती है, थायराइड की बीमारी हो जाती है, थोड़ी बात में आनंद खत्म, उदास हो जाएंगे, फिर थायराइड की बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, तो डायबिटीज इनका इलाज इस तरह से है, शक्तियां जोड़ों की बीमारियां, जितने जोड़ हैं मसल्स हैं बोन्स हैं सारा उसका कनेक्शन किससे है, शक्तियों से है, गर्दन माना फ्लेक्सिबिलिटी, कमर माना झुकना, हाथ माना सहयोग करना, मतलब हर जोड़ का मतलब कोई ना कोई शक्ति है, तो जैसे हर जोड़ में जो भी शक्ति का प्रयोग करो ना, जो शक्ति कमी है ना सातों शक्तियों का प्रयोग करो, सारे जोड़ ठीक हो जाएंगे, ठीक है, और सातों एनर्जी मिलकर बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देंगे, टॉक्सिन्स ना जहरीले पदार्थ है ना किडनी में निकलते हैं वो सारा किडनी साफ करते हैं, तो जब इस तरह से करोगे ना तो ये ज्ञान की गहराई है, और परमात्मा कौन है, ज्ञान का सागर है, है ना, तो ज्ञान का परमात्मा सातों गुणों का सागर है, किसी देहधारी के पास नहीं, वो सागर है, तो जितना अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हो, जितना ज्यादा एबीसीडी को रिवाइज करते हो, उतना अधिक आपका परमात्मा से मनन चिंतन मंथन सिमरण और स्मृति स्वरूप बनते जाओगे, स्मृति स्वरूप से समृद्धि आती जाएगी, उतना अधिक कनेक्शन लगता जाएगा, एक एक गुण की अनुभूति होती, एक एक संबंध की अनुभूति होती जाएगी और वो करंट आपके अंदर भरती जाएगी। बीच में मन है, मन हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। मन नेगेटिव तो यहां तो एनर्जी आ जाएगी पर हमारे शरीर में नहीं जाएगी। यहां तो प्यार आ गया फिर तो मुख से मीठा बोल निकलेगा नहीं, मन से मुख से कड़वा ही निकलेगा अगर मन नेगेटिव है। तो मन पॉजिटिव कैसे होगा? मुरली से होगा। तो आत्मा में सात एनर्जी आएंगी अमृत वेला योग से, पावरफुल योग से, और मन पॉजिटिव बनेगा मुरली से। किससे बनेगा? मुरली से। अमृत वेला किसका पावरफुल होगा? जो रोज सोने के पहले 10:15 बजे टाइम पर सोएगा और लेटर लिख के सोएगा, पोता मेल देके सोएगा, लेटर चार्ट भर के सोएगा, उसका अमृत वेला अच्छा होगा। जो लेटर नहीं लिखता बाबा को, अपना चार्ट नहीं देता बाबा को, उसका अमृत वेला अच्छा नहीं होता। ठीक है? तो अमृत वेला सातों एनर्जी आ गई, फिर 5 बजे से लेकर 8 बजे तक क्या करो? मुरली का ही मनन चिंतन मंथन करते रहो। तो फिर क्या होगा? सातों एनर्जी बॉडी में आ जाएंगे, टीम पॉजिटिव होगी ना। मन मना टीम, स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प, वो चारों पॉजिटिव। मुरली में सब 100% पॉजिटिव है, तो ये मुरली से मन पॉजिटिव होएगा। तो ये ना सखीरी मैंने पाए, पायरी तीन रतन, एक बाबा एक मुरली एक मधु। तो बाबा से सात एनर्जी मिली तो सात एनर्जी आ गई, मुरली से मन पवित्र हो गया, ये शरीर मधुबन से पवित्र हो गया। तो मधुबन माना ये फील करो, अपने घर में खाना खाते हो ना जब शरीर के लिए, तो ये फील करो मधुबन का खाना है, बाबा की याद में खाना, बाबा की याद, बाबा को तुम खिलाओ बाबा तुम्हें खिलाए, सूक्ष्म में चले जाओ बाबा के पास, सूक्ष्म वतन में थाली लेके वहीं खाओ। अभी तो हमारी शादी हुई, बाबा से भी अभी तो सगाई हुई ना, नहीं तो कैसे खाते हैं? नई नई शादी होने पे कैसे खाते हैं, है ना? वो उसको खिलाता है, वो उसको खिलाता है ना, तो ऐसे ही खाओ। नहीं ऐसे ही खाओ, वो प्यार से खिलाए, वो आप उसको खिलाओ, वो आपको खिलाए, वो कहे ना आप अपने आप खा लो, नहीं मैं नहीं खाता, मैं छोटा बच्चा हूं ना, छोटी बच्चे जैसे बच्चे कहते ना, ऐसे सिखाओ। तो इस तरह से फिर बाबा मधुबन में सैर करो, मुरली वहां सैर भले कर रहे हो मन से ही। मधुबन कितने दूर है यहां से आपके घर से? अच्छा बाबा कितने दूर है यहां से? एक सोच की दूरी पर है। कितने दूर है? परमधाम कितने दूर है? एक सोच की दूरी पर। मधुबन कितने दूर है आपके घर से? एक सोच की दूरी पर। देखो मैं दिल्ली में रहते थे ना हम लोग, हम अमृत वेला करने में रोज यहां आता था, बैठता अपने कमरे पे था कि तू सोचा और बाबा कमरे में पहुंच गया सामने, फिर बाबा कमरे बैठ के मेडिटेशन करते थे। मुरली सुनने भी हम लोग ओम शांति भवन में आते थे रोज दिल्ली से, कभी मैंने अपने वहां सेंटर पे बैठ के मुरली नहीं सुनी। फिजिकली सेंटर पे बैठा हूं किंतु आ कहां पर गया? आगे आगे सीट है ना, जो सोफा, सोफे की दूसरी सीट पर मेरी फिक्स थी ओम शांति भवन में ना, अभी भी शांति भवन में फिक्स सीट है ना, सोफे पर कौन सी सीट है, दूसरी सीट तीसरी सीट बैठता हूं, है ना, तो फिक्स है ना, तो वो सीट पे बैठ के मुरली सुनना। वॉकिंग करने दिल्ली में वॉकिंग कर रहा हूं पर यहां पर आ गया, नक्की के किनारे पर आ गया, यहां वॉकिंग कर रहा हूं। ठीक है? तो ऐसे मधुबन है ना, तो मधुबन शरीर के लिए स्वस्थ करने के बाद, तो इससे क्या होगा? जब ये चीज तीनों चीज करोगे तो आपके आसपास क्या हवा मंडल इकट्ठा हो जाएगा आपके आसपास, ये सातों एनर्जी निकल के आपके आसपास इकट्ठी हो जाएगी और ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुखानंद शक्ति आपके आसपास इकट्ठी हो जाएंगी और वो आपका कवच बन जाएगा। फिर कोई भी व्यक्ति, कोई सामने गुस्सा करेगा, कोई कुछ भी कर गाली देगा, उसका असर आपके ऊपर नहीं होगा। दुख आएंगे, परेशानी आएगी, भूकंप आएगा, क्या कहते हैं अभी क्या आया था, तूफान आएगा, बरसात आएगी, बाढ़ आएगी, आपको नहीं डुबोएगी। ठीक है? आप डूब के नहीं मरोगे, ठीक है, दब के नहीं मरोगे। कैसे मरोगे? अपनी इच्छा से शरीर छोड़ के जाओगे विषम की तरह से। ठीक है? क्योंकि इस तरह से जब ये है ज्ञान की गहराई, तो लाइट हाउस बन जाएंगे और जब ज्ञान की गहराई आएगी तो योग की गहराई तो अपने आप आ जाएगी। ठीक है? ओके। तो क्या करोगे? सबसे बड़ा साधन क्या है इसका? ये मुरली, ये प्रेम पत्र है ना, कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तो ये बाबा का ज्ञान है ना, इतना गहराई से इसको है ना। बाबा ज्ञान बहुत रमणीक है ना, और प्रैक्टिकल है। आज बाबा ने क्या कहा मुरली में? क्या कहा? तुम स्वयं की औषधि भी एकाग्रता की शक्ति से कर सकते हो। जब एक ये ABCD करते करते जब क्या हो, एक ही संकल्प रह जाएगा बस बाबा, तो ये हमारी एकाग्रता है। इस एकाग्रता की शक्ति से अपने शरीर की भी बीमारी ठीक हो जाएगी और अनेक रोगियों के रोगों को ठीक कर सकते हो। कोई भी रोग हो, कैसा भी हो, लाइलाज हो तो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब आप अभ्यास करेंगे तो आने वाले समय में डॉक्टर नहीं रहेंगे, दवाइयां भी नहीं देंगे, ऑपरेशन भी, लाइट भी नहीं रहेगी, तो आपकी दृष्टि ही उनको ठीक करेगी, साक्षात्कार कराएगी। बाप हमारे दृष्टि से, यहां से मस्तक से उनको साक्षात्कार होंगे। तो इसके लिए त्याग करो, त्याग से तपस्या है, तपस्या से सेवा है। त्याग क्या करो, ये पांच विकारों का, चार बातों का, देह, अपनी देह, देह मेरी नहीं है, बाबा की दी हुई, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार देह का स्वभाव है, संस्कार क्या, आलस अलबेलापन देह का संस्कार है, और देह के पदार्थ, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, मुझे ये चाहिए, क्रीम चाहिए, मुझे कंघा चाहिए, सिंपल रहना, सिंपल है ना, फैशनेबल नहीं, सिंपल रहो। तो इसके फिर चार चीजों त्याग करेंगे तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारे अंदर तपस्या, फिर बेर की वैरागी वृत्ति होगी, तपस्या, फिर हमारा अटैचमेंट वहां होगा, फिर तपस्या होगी तो ऑटोमेटिक सेवा हो जाएगी, नहीं तो त्याग के बगैर तपस्या। ये भी मैं पढ़िए, साथ में लड्डू रखू, यहां भी लड्डू, दो हाथ में लड्डू नहीं मिलेगा, एक हाथ में लड्डू मिलेगा। ठीक है, ओम शांति। बातें ऊपर से गई या अंदर गई?
तेरे ज्ञान की जले विश्व में ज्योति,
ज्ञान की इस ज्योति में मैं देहवान ही भूलती,
शिव बाबा तेरे ज्ञान की जले विश्व में ज्योति। शक्ति से मन में विकार नहीं आते,
अब गुण मिटते और मिटते जाती गलती,
अब गुण मिटते और मिटते जाती
में ज्योति। ओम शांति। भाई साहब ने बहुत ही सुंदर शब्दों में आत्मा की गुणों शक्तियों के बारे में बताया, मुरली के मनन चिंतन के बारे में बहुत सहज विधि बताई, जैसे बाबा कहते रहते हैं मुरली का विचार सागर मंथन करो, ये बात हम सुनते रहते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा स्पष्टीकरण भाई साहब ने दिया। और बचपन से जो पोएम हम सुनते आ रहे थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसका भी बहुत अच्छा मीनिंग बताया, तो हम सब भाई साहब को बहुत बहुत दिल से थैंक्स करेंगे, बहुत जोरदार करतल ध्वनि से भाई साहब को थैंक्स करेंगे। थैंक यू।